आगे सबक देखिए भाई, व इन तल्लकहा निस्फ तत्लीकतिन औ सुलुस तत्लीकतिन कानत तालिकन तत्लीकतन वाहिदा लिअन्न तलाक ला यतजज़्ज़ऊ व ज़िक्रु बाज़ी मा ला यतजज़्ज़ऊ कज़िक्रिल कुल व कदल जवाबु फी कुल जुज़्इन सम्माहु लिमा बय्यन्ना ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا. گزشتہ سبق میں ہم نے باب ایقاع طلاق شروع کیا تھا، طلاق واقع کرنے سے متعلق جو احکام ہیں اور طلاق واقع کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو کس کا کیا حکم ہوگا، وہ صاحب ہدایہ بیان فرما رہے تھے بھائی. साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि तलाक दो किस्म पर है، एक सरीह और एक किनाया. सरीह वो तलाक है जिसके अंदर तलाक के अलावा कोई और माना ना हो، जैसे अंति तालिकुन अंति मुतल्लकतुन या तल्लकतु की वगैरह. तो यहां पर तलाक के अलावा और कोई माना नहीं है، और सरीह का हुक्म यह है कि इसके अंदर नीयत की भी जरूरत नहीं होती، इससे तलाक खुद ब खुद वाक हो जाएगी، और नीस एक ही तलाक होगी और तलाक भी रजई होगी، इल्ला ये कि इसके साथ कोई मजीद लफ्ज या सिफत वगैरह बढ़ा दे तो फिर उस सूरत में तलाक बाइन हो सकती है، लेकिन वैसे खुद सरीह लफ्ज से तलाक रजई ही होती है भाई. और अगर किसी ने इसके जरिए तलाक बाइना की भी नीयत की तो बाइना इसे वाक नहीं होगी، रजई ही वाक होगी भाई. तो इससे एक ही तलाक वाकई होगी अगरचे ज्यादा की नीयत ही क्यों न कर ले. जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं، सरीह के जरिए जितनी तलाकों की नीयत खावंद करेगा उतनी ही तलाकें वाकई हो जाएंगी. वजह यह कि ये मसलन अंति तालिकुन कहा है तो तालिकुन सिफत है और यानी मुश्तक है، और हर मुश्तक के जिमन में मुश्तक मिनहू यानी मस्तर भी आ जाता है. नीस इस अंति तालिकुन के साथ कभी तमीज भी लाई जाती है، मसलन अंति तालिकुन सलासन या अंति तालिकुस्नतैन. तो यहां देखो ये जो सलासन और इस्नतैन है ये तमीज है माकबल से، और तमीज जो है माकबल कलाम से इबहाम को दूर करती है، यानी माकबल के कलाम के अंदर माकबल की निस्बत के अंदर जो इहतमालात होते हैं उनमें से किसी एक इहतमाल को मुतायन कर देती है. तो अंति तालिकुन सलासन ये जो सलासन तमीज आ रही है इसने माकबल के इस सलासन के इहतमाल को मुतायन कर दिया، मालूम हुआ माकबल में सलासन का भी एहतमाल था. अंति तालिकुन इस्नतैनी देखो इसके अंदर इस्नतैन ने माकबल के एहतमाल को पक्का कर दिया، मालूम हुआ अंति तालिकुन के अंदर इस्नतैन का भी एहतमाल था. तो तमीज माकबल कलाम के एहतमाल को मुतायन करती है، मालूम हुआ अंति तालिकुन में एक का भी एहतमाल है، दो का भी एहतमाल है और तीन का भी एहतमाल है. और जब एक कलाम के अंदर एक चीज का एहतमाल भी मौजूद हो और फिर कहने वाला उसकी नीयत भी कर ले तो वो साबित हो जाता है. लिहाजा अंति तालिकुन के जरिए खावन एक की भी नीयत कर सकता है، दो की भी नीयत कर सकता है और तीन की भी، क्योंकि ये सब इसके मोहतमल हैं، इन सब का इसमें एहतमाल है. जबकि हमारे नजदीक अंति तालिकुन ये जो तालिकुन है ये मुफरद सिफत है भाई، इसका मौसूफ मुफरद है، आई अंतिम रातुन तालिकुन، और मौसूफ मुफरद हो तो सिफत भी मुफरद होती है، तो ये मुफरद की सिफत है. और दो और तीन ये तो आदद हैं भाई، मैंने बतलाया था इल्मे रियाजी वालों के नजदीक आदद किसे कहते हैं، मजमुआ हाशियतैन का निसफ. लिहाजा एक तो आदद नहीं है क्योंकि एक के ऊपर तो दो का आदद है लेकिन एक से नीचे कोई आदद नहीं، जबकि एक के अलावा बाकी सारे आदद हैं. तो हमारी दलील चल रही थी कि अंति तालिकुन ये तालिकुन मुफरद है، लिहाजा इसमें अदद का इस्तेमाल नहीं، क्योंकि मुफरद और अदद एक दूसरे की जिद हैं، जो मुफरद है वो अदद नहीं और जो अदद है वो मुफरद नहीं है भाई. और बाकी आपने कहा कि अंति तालिकुन के अंदर तालिकुन मुश्तक है और मुश्तक के जिमन के अंदर मुश्तक मिनहू भी आ जाता है، तो उसका जवाब भी दिया कि यहां तालिकुन के जिमन में तलाक मस्तर है، और तलाक मस्तर ये तो औरत की सिफत है، मर्द की सिफत तो ततलीक है، ततलीक जो है उसके अंदर एक दो या तीन की नीयत हो सकती है، تطلیق یعنی طلاق دینا, اور طلاق مصدر یہ تو عورت کی صفت ہے, اس کے یہ عدد سے موصوف نہیں ہوتی بلکہ یہ رجعی یا بائن ہونے کے ساتھ موصوف ہوتی ہے کہ یہ طلاق یا رجعی ہوگی یا بائن ہوگی. تو لہذا یہاں عدد کا کوئی احتمال نہیں ہے, کیونکہ طلاق مصدر یا عورت کی صفت ہے, اس میں عدد کا احتمال نہیں. رجعی اور بائن ہونے کا تو احتمال ہے لیکن عدد کا احتمال نہیں. اور تطلیق جو خاوند کا فعل ہے وہ عدد کا احتمال رکھتی ہے, لیکن وہ تو یہاں موجود ہی نہیں. انتی طالقن کے ضمن میں طلاق مصدر تو ہے, تطلیق نہیں ہے. اور تطلیق جو ہے وہ عدد کا احتمال رکھتا ہے, وہاں خاوند ایک دو یا تین کی نیت کر سکتا ہے. اور باقی آپ نے کہا تھا انتی طالقن سلاسن, کہ یہ سلاسن تمیز ہے, تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ تمیز نہیں ہے بلکہ اس کا موصوف محذوف ہے. اے انتی طالقن طلاقن سلاسن, تو یہ طلاق کی صفت ہے جو مصدر محذوف ہے بھائی. اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے کچھ مسائل ذکر کیے تھے جن میں مصدر کو ساتھ ذکر کیا گیا تھا. کس کو؟ مصدر کو. مثلا انتی طلاق, تو الطلاق مصدر ہے اور معرفہ ہے, اس پر الف لام داخل ہے, اور اس کا حمل کیا عورت پر, اور عورت تو طلاق نہیں ہے, وہ تو طلاق والی ہو سکتی ہے, طلاق نہیں ہو سکتی. تو بتلایا صاحب ہدایہ نے کہ مصدر کا حمل ذات پر کیا جاتا ہے اور پھر وہاں وہ صفت کے معنی میں ہوتا ہے. تو انتی طلاق یہ کس معنی میں ہوا؟ انتی طالقن کے معنی میں ہوا, لہذا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. اسی طرح اگر مفعول مطلق لاتا ہے انتی طالقن الطلاق, انتی طالقن اور مفعول مطلق معرفہ لایا الف لام کے ساتھ الطلاق, انتی طالقن الطلاق, یا مفعول مطلق کو نکرہ لایا انتی طالقن طلاقن, تو اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ انتی طالقن سے طلاق واقع ہو رہی تھی, تو طالقن کے لیے آگے مفعول مطلق بھی لے آئے تو مفعول مطلق اسی ماقبل کے فعل کو پکا کر دیتا ہے. تو آگے جو الطلاق آ رہی تھی اس نے اس طالقن کو پکا کر دیا. تو جب صرف انتی طالقن بغیر تاکید کے ہو اسے طلاق ہو جاتی ہے, تو جب طالقن تاکید کے ساتھ ہو تو اسے بطریق اولا طلاق ہو جائے گی. ہاں البتہ جب مصدر کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر تین کی بھی نیت کر سکتا ہے خاوند, کیونکہ مصدر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے. اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر, یعنی پوری جنس پر, پوری جنس پر بھی اس میں جنس کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے انسان, انسان بول کر ایک انسان بھی آپ مراد لے سکتے ہیں, اور انسان بول کر تمام انسان بھی آپ مراد لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک ہی جنس ہے. توجہ ہے؟ تو لہذا یہاں پر مصدر کا لفظ آیا, اور مصدر کا لفظ یہ تو مفرد ہے, طلاق لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. لہذا مفرد لفظوں کے معنی میں بھی مفرد کی رعایت رکھی جاتی ہے, لہذا اس کا معنی بھی مفرد ہوگا. لیکن مفرد دو ہو سکتے ہیں, ایک مفرد حقیقی, ایک مفرد حکمی. مفرد حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں ایک ہو. تو انتی طلاق اس کے اندر ایک کی نیت کرتا ہے تو ایک ہی واقع ہو جائے گی, یا کوئی نیت نہیں کرتا پھر بھی ایک ہو جائے گی, یا دو کی نیت کرتا ہے پھر بھی ایک ہی ہوگی بھائی, کیونکہ یہ طلاق مفرد ہے. یعنی جو اس میں جنس ہے یہ ادنا کو تو یقینی طور پر شامل ہے اور کل کا اس میں احتمال ہوتا ہے. تو انتی طلاق کے اندر ایک کو تو یہ یقینی شامل ہے, ایک طلاق تو ضرور ہوگی, لیکن کل یعنی تین طلاقوں کا بھی اس میں احتمال ہے. لہذا اگر اس مصدر والے لفظوں کے اندر خاوند نے تین طلاقوں کی نیت کر لی تو تین بھی واقع ہو جائیں گی. اس لیے کیونکہ تین یہ کل طلاقیں ہیں آزاد عورت کی, اور تو یہ کل جنس ہے. تو لہذا طلاق مفرد لفظ ہے, مصدر ہے, اور جو مفرد لفظ ہو اس کے اندر مفرد معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے, اور مفرد جو ہے وہ معنی جو ہے وہ یا تو فرد حقیقی ہوگا یا فرد حکمی ہوگا, یعنی پوری جنس ہوگی. تو بہرحال فرد حقیقی ہو اس میں بھی وہ بھی مفرد ہے, یا پوری ایک جنس ہے یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے, کہ پوری ایک جنس ہے. تو لہذا مصدر بول کر ایک طلاق کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے, اور پوری جنس یعنی تین طلاقوں کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن دو تو عدد ہے, اور عدد کا یہاں ارادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مفرد اور عدد دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں بھائی. اور اگر یہی لفظ جو ہے انتی طالقن الطلاق मफूल मुतलक जो साथ आ रहा है, अंति तालिकुनी तलाका या अंति तालिकुन तलाकन, मस्तर या नकेरा ले आओ या मारिफा ले आओ। तो दोनों सूरतों में अगर खावन कहता है मैंने दो की नीयत की थी, तो अगर वैसे दो की नीयत की है फिर तो तलाक मस्तर है और मस्तर के अंदर अदद का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अगर खावंद कहता है मैंने अंति तालिकुन, ये तालिकुन से मैंने एक तलाक की नीयत की थी, और आगे अत तलाक जो मफूल मुतलक आ रहा है, अत तलाक या तलाकन जो नकिरा है, तो इसके जरिए मैंने दूसरी तलाक की नीयत की थी, फिर दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। फिर दो तलाकें वाकई हो जाएंगी इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक से तलाक वाकई हो सकती है, तालिकुन से भी और अत-तलाक या तलाक से भी। भाई और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर तलाक की निस्बत पूरी औरत की तरफ की जाए तब भी तलाक वाकई हो जाएगी, और अगर उसके किसी ऐसे उज़्व की तरफ तलाक की निस्बत की जाए जिसके साथ पूरे बदन को ताबीर किया जाता है तो इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे उज़्व की तरफ तलाक की निस्बत की जिसके साथ पूरे बदन को ताबीर नहीं किया जाता, जैसे यद है या रिजल है, कि यदु की तालिकुन या रिजुलु की तालिकुन, तो फिर इस सूरत के अंदर तलाक वाकई नहीं होगी इंदल अहनाफ भाई, जबकि इंदल शवाफिया और इमाम जुफर रहिमहुमल्ला के नजदीक तलाक वाकई हो जाएगी भाई। और अगर तलाक की निस्बत जुजे शाएअ की तरफ की, यानी वो जुज जो फैला हुआ है पूरे बदन के अंदर, तो औरत को कहते हैं तुम्हारे निसफ को तलाक है या तुम्हारे सुलुस को तलाक है, तो इस सूरत के अंदर भी औरत को तलाक हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ये जो जुजे शाएअ होता है, फैला हुआ जो जुज होता है, ये तमाम तसर्रुफात का महल है, इसके अंदर बैउ शिरा भी जारी होती है, और लिहाजा तलाक भी इस पर वाकई हो जाएगी क्योंकि तलाक भी एक तसर्रुफ है भाई। अलबत्ता एक बात है, यह तलाक फिर सिर्फ उस जुज तक नहीं रहेगी बल्कि सिरायत कर जाएगी, पूरी जात में आ जाएगी, यानी पूरी औरत को ही तलाक हो जाएगी भाई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वह इन तल्लकहा निस्व तत्लीकतिन औ सुलुस तत्लीकतिन कानत तालिकन तत्लीकतं वाहिदा। सूरत मसला ये, खावंद अपनी बीवी से कहता है तुम्हें आधी तलाक है, या कहता है तुम्हें सुलुस तलाक है, या कहता है तुम्हें एक तलाक का सौवा हिस्सा तलाक है। याद रखो, तलाक पूरी जिक्र करे या जुज जिक्र करे, हुक्म एक ही है, तलाक वाकई हो जाएगी। मसलन खावंद ने कहा तुम्हें आधी तलाक है, भाई तलाक की तो तकसीम नहीं हो सकती, तलाक तो आधी नहीं हो सकती, लिहाजा ये पूरी तलाक हो जाएगी, एक तलाक हो जाए। या अगर कहा तुम्हें सुलू से तलाक है, तलाक का तीसरा हिस्सा है, तो भी पूरी तलाक हो जाएगी। और या इसी तरह कहता है तुम्हें एक तलाक का सौवां हिस्सा तलाक है, भाई तलाक के अंदर तो तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा पूरी तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वह इन तल्लकहा निस्व तत्लीकतिन औ सुलुस तत्लीकतिन, और अगर खावन ने बीवी को निस्व तलाक दी औ सुलुस तत्लीकतिन या सुलुस तलाक दी, कान तालिकन तत्लीकतं वाहिदा, तो इस सूरत में उस औरत को एक ही तलाक हो जाएगी। लिअन्न तलाक ला यतजज़ा, इसलिए क्योंकि तलाक जो है उसमें तकसीम नहीं होती। वज़िक्रु बाज़ी मा ला यतजज़ा कदिक्रिल कुल्ली, और मालायत जज़ा वो चीज जो तकसीम नहीं होती उसके जुज को भी जिक्र करना इसी तरह है जैसे कुल को जिक्र किया जाए जी। वो चीज जो तकसीम को कबूल नहीं करती उसके जुज को भी जिक्र कर दिया जाए तो गोया आपने कुल को जिक्र कर दिया, क्योंकि तकसीम तो उसकी होती नहीं, तो जुज का जिक्र भी कुल की तरह है। तो कहते हैं लिअन्न तलाक ला यतजज़ा, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो तकसीम नहीं होती। वज़िक्रु बाज़ी मा ला यतजज़ा, और जिक्र करना उस चीज के बास को जो तकसीम नहीं होती। का जिक्रिल कुल, ये इसी तरह है जैसे कि उसके कुल को जिक्र कर दिया जाए, ये इसी तरह है जैसे किसास, एक शख्स ने दूसरे शख्स को आलाय कतल से जानबूझकर कतल किया है, तो आप जानते हैं सूरत में किसास आता है, कातिल को भी कतल किया जाएगा। और इस किसास के अंदर अगर कोई वरासा में से कोई एक भी माफ कर देगा तो किसास साकित हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बाज़े किसास को माफ करना इसी तरह है जैसे कुल किसास को माफ करना, क्योंकि किसास की तकसीम नहीं हो सकती कि कुछ कत्ल कर दिया जाए और कुछ कत्ल न किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो कत्ल किया जाएगा या कत्ल नहीं किया जाएगा, दो ही सूरतें हैं। तो किसास तकसीम को कबूल नहीं करता, लिहाजा बाज़े किसास को भी माफ करेंगे तो कुल किसास ही माफ हो जाएगा और साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वकदल जवाबु फी कुल्ली जुज इन सम्माहु, और इसी तरह है जवाब हर उस जुज में सम्माहु जो खावन जिक्र करे, खावन जो भी जुज जिक्र करेगा उसमें यही जवाब है, यही मसला है। यानी पचासवां जुज जिक्र करे, सौवां जुज जिक्र करे, हजारवां जुज जिक्र करे कि मैं तुम्हें तलाक का हजारवां जुज तलाक देता हूं, तो भी एक पूरी तलाक हो जाएगी। यह माना है वकदल जवाब उफी कुल्ली जुज इन सम्माहु, और इसी तरह है जवाब हर ऐसा जुज सम्माहु जिसको खावंद बयान करे, जिसको खावंद जिक्र करे, लिमा बैयन्ना उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि तलाक तकसीम को कबूल नहीं करती। वलौ काला लहा, और अगर खावंद ने बीवी से कहा अंति तालिकुन सलासता अंसाफी तत्लीकतैनी, अंति तालिकुन सलासता अंसाफी तत्लीकतैनी, खावन बीवी से कहता है तुम्हें दो तलाकों के तीन निसफ तलाक है, दो तलाकों के तीन निसफ, दो तलाकों का निसफ कितना एक, ये निसफ है, और तीन निसफ कितने हो गए, दो तलाकों का निसफ कितना एक, और ये निसफ जो है इसको तीन दफा करो तो कितनी हो गई, तीन तलाकें हो जाएंगी। इस सूरत में खावन बीबी से कहता है तुम्हें दो तलाकों के तीन निसफ तलाक है, तो दो तलाकों का निसफ कितना एक तलाक, और उसने कहा तीन निसफ, तो तीन तलाकें हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो कहते हैं वलौ काल अलहा, और अगर खामन ने बीबी से कहा अंति तालिकुन सलासता अंसाफी तत्लीकतैनी कि तुम्हें तलाक है दो तलाकों के तीन निसफ, फहिया तालिकुन सलासन, तो इस औरत को तीन तलाकें हो जाएंगी। लिअन्ना निस्फत तत्लीकतैनी तत्लीकतुन, इसलिए क्योंकि दो तलाकों का निसफ एक तलाक है। फइज़ा जमा बैना सलासती अंसाफिन, तो जब जमा कर दिया उसने तीन निसफों को, तो तकून सलासत तत्लीकातिन जरूरतन, तो फिर तीन तलाकें हो जाएंगी जरूरतन यकीनी तौर पर। वलौ काला, और अगर खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन सलासता अंसाफी तत्लीकतिन कील यकाउ तत्लीकतानी, सूरत मसला ये, खामन ने बीवी से कहा तुम्हें एक तलाक के तीन निसफ तलाक है, एक तलाक के तीन निसफ, तो एक तलाक का निसफ कितना हुआ आधी तलाक, और आधी तलाक को तीन दफा करें कितना बना डेढ़ तलाक, और डेढ़ तलाक तो हो नहीं सकती, तो दो पूरी हो जाएंगी। वलौ काल अंत तालिकुन सलासता अंसाफी तत्लीकतिन, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे एक तलाक के तीन निसफ तलाक है, कील यकाउ तत्लीकतानी, तो कहा गया है कि दो तलाकें वाकई होंगी। लिअन्नहा तलकतुन व निसफुन, इसलिए क्योंकि ये तीन निसफ जो हैं ये तलकतुन व निसफुन, ये डेढ़ तलाक है एक और निसफ है। फयतकामलु, तो ये जो निसफ है ये भी पूरा हो जाएगा, तो दो तलाकें हो जाएंगी। वकील यकाउ सलासु तत्लीकातिन, बस फुकहा फरमाते नहीं तीनों हो जाएंगी, अगर खामन ने यूं कहा तुम्हें एक तलाक के तीन निसफ तलाक है तो हर निसफ तलाक पूरी हो जाएगी, क्योंकि निसफ तो हो नहीं सकती, तो तीन निसफ से तीन तलाकें ही वाकई हो जाएंगी भाई। तो कहते हैं वकील यकाउ सलासु तत्लीकातिन, और कहा गया है कि तीन तलाकें वाकई हो जाएंगी। लिअन्न कुल्ल निस्फी यतकामलु फी नफ्सिहा, इसलिए क्योंकि हर आधा जो है वो अपनी जात के एतबार से पूरा हो जाएगा। फयसीरु सलासन, तो तीन तलाकें हो जाएंगी। तो बास फुकहा फरमाते हैं अगर खामन ने बीवी से यह कहा कि तुम्हें एक तलाक के तीन निसफ तलाक है तो दो तलाकें होंगी, और बास फरमाते हैं कि तीन हो जाएंगी, लेकिन उलमा ने अव्वल कौल को ज्यादा सही करार दिया है कि तीन निसफ हुए तो ये डेढ़ हो गए, और डेढ़ तलाक तो नहीं हो सकती तो इस आदि को भी पूरा कर देंगे तो दो तलाकें होंगी, तो ये कौल ज्यादा सही है दो तलाक वाला। आगे देखिए वलौ काला अंति तालिकुम मिन वाहिदतिन इला सिनतैनी औ मा बैन वाहिदतिन इला सिनतैनी फहिया वाहिदतुन, खावंद बीवी से कहता है तुम्हें एक से लेकर दो तक तलाक है, तुम्हें एक से लेकर दो तक तलाक है, या यूं कहता है खावंद बीवी से कि तुम्हें एक और दो के जो दरमियान है वो तलाक है। लफ्जों पे नजर है, पहली सूरत क्या, खावंद बीवी से कहता है तुम्हें एक से लेकर दो तक तलाक है। देखो इब्तिदा और इंतहा को जिक्र कर रहा है, शुरू कहां से है, एक से, इख्तिताम कहां पर है, दो पर। दूसरी सूरत में भी इसी तरह, खावंद बीवी से कहता है तुम्हें एक और दो के दरमियान जो है वो तलाक है। इब्तिदा जिक्र की कहां से, एक से, और इंतहा जिक्र की दो तक, एक और दो के बीच में जो है वो तुम्हें तलाक है। तो याद रखो, इसके लिए ज़ाबता पहले याद कर लें, याद रखो ये दो गाया हैं, दो किनारे, इनको क्या कहते हैं, गाया। इब्तिदा का किनारा है एक, इंतहा का किनारा है दो, एक से दो तक। तो गाया इब्तिदा क्या, एक, और गाया इंतहा क्या, दो है। तो याद रखो, याद रखो, इमाम साहिब का मजहब यह है कि इस सूरत में इन दोनों के जो दरमियान होता है वो तलाक वाके होगी। गाया इब्तिदा और गाया इंतहा के जो दरमियान है वो वाके होगी, और नीज गाया इब्तिदा भी शामिल होगा साथ, गाया इब्तिदा भी साथ शामिल होगा। ज़ाब्ता याद रखें, अभी लफ्ज बल्कि दूसरी मिसाल भी पहले समझ लें। यह तो एक सूरत थी, एक से लेकर दो तक या एक और दो के बीच में। दूसरी सूरत, खामन यूं कहता है कि तुम्हें एक से लेकर तीन तक तलाक है, एक से लेकर तीन तक, या तुम्हें वो तलाक है जो एक और तीन के बीच में है, एक और तीन के बीच में है। तो देखो यहां दो गाये जिक्र हो रहे हैं, एक इब्तिदा वाला और एक इंतहा वाला। तो इमाम साहिब का जाब्ता यह है कि इन दो तलाकों के दरमियान जो तलाक होगी वो वाके होगी, इन दो तलाकों के दरमियान तलाक जो है वो वाके होगी, और एक और तीन के दरमियान कौन सी तलाक है, दूसरी तलाक। तवज्जो है, जब दूसरी तलाक वाके होगी तो दूसरी तो हो नहीं सकती पहली के बगैर, लिहाजा पहली भी साथ वाके हो जाएगी, यानी गाया इब्तिदा भी साथ शामिल हो जाएगा। तवज्जो है, दूसरी तलाक बगैर पहली के हो सकती है नहीं, तलाक आप जब भी दोगे वो पहली शुमार होगी, दूसरी नहीं शुमार होगी। दूसरी के लिए जरूरी है कि उससे पहले एक और तलाक हो। तो इमाम साहब का जाब्ता क्या कि जब दो गाया जिक्र हो, तलाक के अंदर अदद जिक्र हो रहे हैं, तो दो गाया जिक्र हो तो उनके दरमियान वाली तलाक मुराद होगी जो उन दोनों के बीच में आ रही हो, लेकिन गाया इब्तिदा भी साथ शामिल होगा, क्योंकि गाया इब्तिदा के बगैर तो उससे अगले तलाक नहीं हो सकती। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं दोनों गायों में से एक भी नहीं दाखिल होगा, दोनों गायों में से एक भी दाखिल नहीं होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं दोनों गाय दाखिल होंगे, इब्तिदा वाला भी और इंतहा वाला भी, इब्तिदा वाला भी और इंतहा वाला भी। लिहाजा खावन ने बीवी से कहा तुझे एक से लेकर तीन तक तलाक है, तो साहिबैन के नजदीक गाया इब्तिदा भी दाखिल, गाया इंतहा भी दाखिल। तो लिहाजा गाया इंतहा क्या है, तीन, लिहाजा तीन तलाकें हो जाएंगी, तीन में वो एक भी आ गई ना, तो गाया इब्तिदा भी दाखिल होगा और गाया इंतहा भी दाखिल होगा, एक भी दाखिल और तीन भी दाखिल, तो जो ज्यादा है वो वाकई हो जाएगी। वो फरमाते ये इसी तरह है, वो फरमाते ये इसी तरह है जैसे किसी शख्स को कोई कहे मेरे माल में से एक से लेकर सौ दिरहम तक तुम ले सकते हो, एक से लेकर सौ दिरहम तक तुम ले सकते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, एक नहीं लेना, या एक भी ले सकता है, एक भी ले सकता है, और इसका क्या मतलब है, सौ नहीं ले सकता, सौ से एक कम, निन्यानवे ही लेने पड़ेंगे, या सौ भी ले सकता है, सौ भी ले सकता है। जब कोई शख्स किसी दूसरे से कहे मेरे माल में से एक से लेकर सौ दिरहम तक तुम ले सकते हो, तो ये देखो दो गाये जिक्र कर दिए, एक दिरहम और सौ दिरहम, तो ये भी बीच में दाखिल हैं, वो एक भी ले सकता है, वो सौ भी ले सकता है, और वो दरमियान वाले भी किसी आदत पर इक्तिफा कर सकता है। तो साहिबैन की दलील क्या कि गाया इब्तिदा भी उसमें दाखिल होता है और गाया इंतहा भी, तो लिहाजा यहां पर भी एक से लेकर तीन तक कहा तो एक भी दाखिल और तीन भी दाखिल, जब तीन दाखिल हो गया तो तीनों तलाकें हो गई। तो साहिबैन का मजहब क्या कि गाया इब्तिदा भी दाखिल होगा और गाया इंतहा भी, जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं दोनों गायों में से एक भी दाखिल नहीं होगा, दोनों गायों में से एक भी नहीं होगा, लिहाजा खावन ने बीवी से कहा एक से लेकर तीन तक तुम्हें तलाक है, तो एक भी नहीं दाखिल, तीन भी नहीं दाखिल, दरमियान में क्या है दो, यानी तीसरी दूसरी तलाक है, क्या है तो एक और दो के दरमियान कितनी तलाकें, एक ही तलाक है वो जो दूसरी वाली है ना, कुल तलाकें कितनी है तीन, तो एक से लेकर तीन तक तुम्हें तलाकें हैं, एक गाया इब्तिदा और तीन गाया इंतहा, और एक और तीन के दरमियान क्या है दूसरी तलाक, यानी एक तलाक है बीच में, तो ये दूसरी तलाक जो है ये वाकई होगी ना गाया इब्तिदा दाखिल ना गाया इंतहा, एक ही तलाक होगी, एक ही तलाक। और इमाम साहब के नजदीक, इमाम साहब के नजदीक भी दरमियान वाली तलाक आएगी, लेकिन गाया इब्तिदा भी शामिल होगा क्योंकि दरमियान वाली दूसरी है और दूसरी बगैर पहली के नहीं हो सकती, तो दो तलाकें हो जाएंगी। तो इमाम जुफर की दलील भी सुन लो, इमाम जुफर की, इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब एक चीज की हद बयान की जाए, गाया दो गाया जिक्र किए जाएं, तो वो गाये उसके अंदर दाखिल नहीं होते। मसलन एक शख्स दूसरे को अपनी जमीन बेचता है और कहता है इस दीवार से लेकर इस दीवार तक ये जो जमीन है ये मैंने तुम्हें बेच दी, तो वो जो दो दीवारें होती हैं वो बया में दाखिल नहीं होती। मैंने तुम्हें जमीन बेच दी इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, तो जो गाया है यानी दो दीवारें वो बैअ में दाखिल नहीं भाई। या इसी तरह कह लो दो मकान है और दरमियान में कुछ जमीन है, एक शख्स दूसरे से कहता है कि इस मकान से लेकर इस मकान तक मैंने जमीन तुम्हें बेच दी, तो वो मकान बैअ में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि ये तो गाया है, ये तो हुदूद बयान हो रही है, उनके बीच वाली जमीन शामिल होगी बैअ में भाई। तो लिहाजा एक खामन ने कहा एक से लेकर तीन तक तुम्हें तलाक है, तो साहिबैन के नजदीक कितनी तलाकें, तीन तलाकें, क्योंकि गाया इब्तिदा भी दाखिल और गाया इंतहा भी दाखिल है तो तीनों हो जाएंगी। इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक एक भी दाखिल नहीं और तीन भी दाखिल नहीं, और एक और तीन के बीच एक ही तलाक है यानी दूसरी, तो एक तलाक वाकई हो जाएगी। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक दो तलाकें हो जाएंगी क्योंकि एक और तीन के दरमियान दूसरी तलाक है, लेकिन दूसरी तो बगैर पहली के नहीं हो सकती, लिहाजा गाया इब्तिदा भी दाखिल हो जाएगा, तो कितनी तलाकें दो। मसला भी समझ में आया या नहीं, फिर बार बार मैं दोहरा रहा हूं, खूब जहन में जमा लें। खावन ने बीवी से क्या कहा कि तुम्हें तलाक है एक से लेकर तीन तक, या तुम्हें तलाक है वो जो एक और तीन के बीच में है, दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है। इमाम साहब के नजदीक दो तलाकें होंगी, बीच वाली है और लेकिन उसके साथ गाया इब्तिदा को भी शामिल करेंगे, और साहिबैन के नजदीक तीनों वाकई होंगी क्योंकि गाया इब्तिदा और इंतहा दोनों शामिल होंगे, और इमाम जुफर रहमहुल्ला के नजदीक एक तलाक वाकई होगी वो जो दूसरी है, यानी एक और तीन के जो बीच में है और वो एक तलाक है। मसला समझ में आया। अब दूसरी सूरत, खावन ने बीवी से कहा कि तुम्हें तलाक है एक से लेकर दो तक, एक से लेकर दो तक, जी साहिबैन के नजदीक क्या मसला होगा, दो हो जाएंगी क्योंकि गाया इब्तिदा एक भी शामिल और गाया इंतहा दो भी शामिल, तो दो तलाकें हो जाएंगी। और इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक कोई तलाक नहीं होगी क्योंकि एक और दो के बीच में कोई तलाक नहीं है, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक, उनके नजदीक एक तलाक हो जाएगी। यहां उनके नजदीक थोड़ा सा मसला मुख्तलिफ है, वजह यह वो फरमाते हैं दोनों गायों के जो दरमियान वाली है वो वाकई होगी, लेकिन यहां तो एक और दो के बीच कोई तलाक नहीं है जी। अगर दरमियान वाली होती तो फिर इसके साथ गाया इब्तिदा को भी हम मिला लेते, लेकिन यहां तो दरमियान में कोई है नहीं, लिहाजा इस एतबार से कोई तलाक नहीं हो रही, बल्कि माकबल में जो वो अंतिम तालिकुन कह रहा है, अंति तालिकुन निन वाहिदतिन इला सिनतैनी, तो ये अंति तालिकुन बेकार नहीं जाएगा, इमाम साहब फरमाते हैं एक हो जाएगी, एक हो जाएगी, और आगे मिन वाहिदतिन इलस्नतैनी, उससे कोई तलाक नहीं होगी, क्योंकि यहां एक और दो के दरमियान कोई तलाक ही नहीं है। कोई तलाक होती तो फिर हम उसके साथ गाय इब्तिदा को भी मिला लेते। तो ये जो एक हो रही है ये वाहिदतुन की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये अंति तालिकुन की वजह से हो रही है। मसला समझ में आ गया? अब देखिए भाई, वलौ काला अंति तालिकुम मिन वाहिदतिन इला सिनतैनी, और अगर खावंद ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है एक से लेकर दो तक, औ मा बैना वाहिदतिन इला सिनतैनी, या तुझे तलाक है वो जो एक और दो के बीच में है, फहिया वाहिदतुन, तो ये एक ही तलाक होगी यानी इमाम साहब के नजदीक। व इन काला मिन वाहिदतिन इला सलासिन, और अगर खावंद ने कहा तुझे तलाक है एक से लेकर तीन तक, औ मा बैना वाहिदतिन इला सलासिन, या तुझे तलाक है वो जो एक और तीन के बीच में है, फहिया सिनतानी, तो ये दो तलाकें हैं। एक और तीन के दरमियान कितनी है? दूसरी तलाक है, और दूसरी के साथ गाय इब्तिदा को भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तो पहली के बगैर नहीं हो सकती। तो कहते हैं फहिया सिनतानी, तो ये दो तलाकें हैं। वहादा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और ये इमाम साहब के नजदीक है। वकाला फिल उला हिया सिनतानी, और साहिबैन फरमाते हैं पहली सूरत में दो तलाकें हैं, तुझे एक से लेकर दो तक तलाकें हैं, तो उनके साहिबैन के नजदीक गाय इब्तिदा भी दाखिल, गाय इंतहा भी दाखिल, तो दो हो जाएंगी। तो कहते हैं वकाला फिल उला ही असिनतानी, और साहिबैन फरमाते हैं पहली सूरत के अंदर दो तलाकें हैं, व फिसानियति सलासुन, और दूसरी सूरत में तीन तलाकें हैं। दूसरी सूरत कौन सी? तुझे एक से लेकर तीन तक तलाक है, तो गाया इब्तिदा भी शामिल, गाया इंतहा भी शामिल, तो तीन तलाकें हो जाएंगी भाई। तो कहते हैं वफिसानियति सलासुन, और दूसरी सूरत के अंदर तीन तलाकें हैं। वकाल जुफर रहिमहुल्लाह तआला फिल उला, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह पहली सूरत में फरमाते हैं ला यकउ शैउन, कोई चीज वाकई नहीं होगी, क्योंकि एक और दो के बीच में कोई चीज नहीं है, और गाया दोनों गाय ये तो दाखिल नहीं होते। वफिसानियति तकउ वाहिदतुन, और दूसरी सूरत में जब कहा एक से लेकर तीन तक, उसमें एक वाकई होगी। वहुवल कियास, और यही कियास भी है, यही कियास भी है। लिअन्न अल-गायत ला तदखुलु तहतल मजरूबि लहुल गाया, इसलिए क्योंकि गाया मुगैया के तहत दाखिल नहीं होता। जिस चीज की गाया बयान की जाए, जिस चीज के इब्तिदा और इंतहा को बयान किया जाए, उसको मुगैया कहते हैं। क्या कहते हैं? या यूं कहो मजरूब लहुल गाया, मजरूब जर्ब का एक माना बयान करना भी है। जर्ब का क्या माना? बयान करना भी। तो मजरूब लहुल गाया, जिसकी गाया बयान की जाए, तो वही मुगैया। मुगैया क्या है? मजरूब लहुल गाया है, जिसकी गाया बयान की जा रही है। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह की बात चल रही है, वो फरमाते हैं, कहते हैं लिअन्न अल-गायत ला तदखुलु, कि गाया दाखिल नहीं होता, तहत अल मजरूबी लहुल गायतु, उस चीज के तहत जिसकी गाया बयान की जाए, यानी गाया मुगैया के तहत दाखिल नहीं होता। कमा लौ काला, जैसे कोई शख्स कहता है बिअतु मिन का मिन हाद अल हाइत इला हाद अल हाइत, मैंने आपके हाथ बेच दी इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, यानी ये जगह मैंने आपको बेच दी। बिअतु मिन का, यह बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि बा का सिला मिन आता है, मिन जो है मुश्तरी पर दाखिल होगा। मसलन मैंने किताब बेची तो मैं कहूंगा बेअतुल किताब, और मैं कहना चाहता हूं मैंने जैद के हाथ बेची तो मैं कहूंगा बेअतुल किताबा मिन जैदिन। तो यहां पर भी कहते हैं काल, एक शख्स कहता है बेअतु मिन का, मैंने आपके हाथ बेच दी मिन हादल हाइति इला हादल हाइति, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक। तो इस सूरत में वो दरमियान वाली जमीन जो है वो बैअ में शामिल होगी, और दोनों दीवारें वो बैअ में दाखिल नहीं, क्योंकि वो गाया हैं। ये तो इमाम जुफर रहमहुल्लाह का कौल था। आगे कहते हैं वजह कौलिहिमा, साहिबैन के कौल की वजह यह है, वह हुआ इस्तेहसानु, और वही इस्तेहसान भी है। साहिबैन का कौल क्या है? इस्तेहसान। मैंने आपको बतलाया था इस्तेहसान किसे कहते हैं, वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील जिसके मुकाबले में क्या आ जाए, कियास। लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक किस पर होता है? कियास खफी पर। लेकिन कियास खफी, यानी मैंने बताया कियास जली है, जाहिर बात जिसमें अकल फौरन वहां तक पहुंच जाए, और एक कयास खफी है जहां जहन फौरन नहीं पहुंचता, कुछ गौर करना पड़ता है। तो ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक कयास खफी पर होता है, लेकिन कयास खफी को भी तब इस्तेहसान कहेंगे जब उसके मुकाबले में कयास जली हो। अगर उसके मुकाबले में कयास जली नहीं, फिर जितना मर्जी गहरा कयास हो उसको कयास ही कहते हैं, इस्तेहसान नहीं कहते। तो कहते हैं वजह कौली ही मां साहिबैन की कौल की वजह जो है वह अल इस्तेहसान, और वही इस्तेहसान भी है कि अन्ना मिसला हादल कलामी मतादु की रफिल उर्फी, कि इस किस्म का कलाम जब उर्फ में जिक्र किया जाता है, उर्फ यानी आम लोगों की जो आदत है, कि इस तरह का कलाम जो है जब वो आम लोगों की के अंदर जिक्र किया जाता है, युरादु बिहिल कुल्लु, तो उसके जरिए कुल का इरादा होता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, एक शख्स दूसरे से कहता है मेरे माल में से ले लो एक दिरहम से लेकर सौ दिरहम तक, तो इसका यह मतलब नहीं कि एक और सौ के बीच वाले मुराद हैं, बल्कि सारा मजमुआ ही मुराद है, कुल के कुल ही सौ भी वो ले सकता है भाई। तो कहते हैं साहिबैन फरमाते हैं अन्न मिसला हादल कलामी मता दुकिरा फिल उर्फी, के इस किस्म का कलाम जब लोगों के अंदर जिक्र किया जाए तो युरादु बिहिल कुल्लु, तो उसके जरिए कुल का इरादा किया जाता है। कमा तकूलु लिगैरी का, जैसे आप किसी दूसरे से कहते हैं खुज मिन माली मिन दिरहम इला मिअतिन, कि तुम मेरे माल में से ले लो एक दिरहम से लेकर सौ दिरहम तक। वली अबी हनीफत रहिमहुल्लाह, अब इमाम साहब की दलील आ गई। वली अबी हनीफत रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुराद बिही, कि इससे मुराद जो है, मैंने क्या बताया था इमाम साहब का क्या मजहब है, जो इन दोनों के बीच में हो वो मुराद होगा, जो इन दोनों के बीच में हो और नीस गाय इब्तिदा भी दाखिल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच दूसरी तलाक है और दूसरी तलाक तो पहली के बगैर नहीं हो सकती। तो वली अबी हनीफत रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुराद बिही, कि इससे मुराद जो है अल अक्सर मीनल अकली, वो जो अक्सर है मीनल अकल, इधर देखिए इधर देखिए, इमाम साहब के नजदीक ये गाया इब्तिदा और गाया इंतहा के बीच में जो है वो मुराद है। तवज्जो है, खावन ने बीवी से क्या कहा तुम्हें एक से लेकर तीन तक तलाक है, तो गाया इब्तिदा क्या है एक, गाया इंतहा क्या है तीन, और इन दोनों के बीच कौन सी तलाक है दूसरी, तवज्जो है, और ये दूसरी तलाक, ये दूसरी तलाक ये जो एक है इससे अक्सर है, इससे ज्यादा है, तवज्जो है, बल्कि यूं कहो खावन ने क्या कहा तुम्हें एक से लेकर तीन तक तलाक है, तो एक हुआ अकल यानी गाया इब्तिदा है अकल, और तीन जो है वो गाया इंतहा है यानी अक्सर है, क्या है अक्सर। तो इमाम साहब के नजदीक इन दोनों के जो बीच है यानी जो अकल से ज्यादा है और अक्सर से जो कम है, गाया इब्तिदा क्या है अकल और गाया इंतहा क्या है अक्सर ज्यादा है, और जो इन दोनों के बीच है वो कम वाले से ज्यादा है और ज्यादा वाले से कम है, तो ये अकल से अक्सर है और अक्सर से अकल है, वही बयान कर रहे हैं। कहते हैं अन्नल मुराद बिही, के इससे मुराद जो है अल अक्सर मिनल अकली, वो जो ज्यादा है अकल के मुकाबले में यानी जो बीच में है वो अकल के मुकाबले में ज्यादा है। वल अकल मिनल अक्सरी, और वो जो अकल है मिनल अक्सरी किससे अक्सर से यानी अक्सर से वो कम है वो जो बीच में है। बात समझ में आ गई। यहां इश्काल होता है साहिब हिदाया की इबारत पर कि यहां पर इबारत क्या है अल अक्सरो मीनल अकली, अक्सर इसमें तफजील है और इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, या अलिफ्लाम के साथ होगा या मीन के साथ या इजाफत के साथ। जैदुन अजराबु मीन आमरीन, जैदुन अजराबु मीन आमरीन, देखो अजराबु के साथ मीन आ रहा है, और अगर आप अलिफ्लाम लाएं तो फिर मीन नहीं ला सकते, जैदुन जैदुनिल अजराबु, अब आप मीन नहीं ला सकते क्योंकि एक वक्त में एक तरीके से आप इसमें तफसील को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इजाफत कर दें जैदुन अजरबुल कौमी तब भी मीन नहीं ला सकते। तो इसमें तफसील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, अलिफ्लाम के साथ, इजाफत के साथ और मीन के साथ, और एक वक्त में एक ही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा, या अलिफ्लाम होगा या इजाफत होगी या मीन, दो या तीन तरीकों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और यहां इश्काल होता है अल अक्सर मीन अल अकली, अल अक्सर पर अलिफ लाम भी दाखिल है और आगे मीन भी आ रहा है, ये तो इसमें तफजील अलिफ लाम और मीन दोनों के साथ आ गया। इसी तरह अगला जुमला है वल अकल मीन अल अक्सरी, यहां पर भी अल अकल पर अलिफ लाम भी दाखिल है और मीन भी है, तो ये दो तरीके इकट्ठे मिला दिए, हालांकि या अलिफ लाम आएगा या मीन आएगा, दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। इश्काल समझ में आ रहा है? तो साहिब हिदाया जो इतने बड़े अदीब हैं कि इंसान उनकी इबारतों की फसाहत और बलागत देखकर हैरान रह जाता है, सवाल पैदा होता है उनसे यह गलती कैसे हो गई, उनसे यह गलती कैसे हो गई। यह तो वो जाबता है जो इब्तिदाई पहले दर्जे वाले को भी पता होता है। तो जवाब यह कि नहीं, यहां साहिब हिदाया से कोई गलती नहीं हुई। साहिब हिदाया अरबी जुबान के इतने बड़े अदीब हैं कि हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर। भाई मैंने बताया था अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते थे, उनसे किसी भी किताब के बारे में पूछा जाता कि आप इस जैसी किताब लिख सकते हैं, फरमाते इससे भी बेहतर लिख सकता हूं। जो भी किताब जिक्र की जाती फरमाते मैं इससे बेहतर किताब लिख सकता हूं। लेकिन चंद किताबें ऐसी थी जिनके बारे में फरमाते थे मैं ऐसी किताब नहीं लिख सकता, उन्हीं में से एक हिदाया भी थी। फरमाते थे हिदाया की इबारतें इतनी फसीह व बलीग हैं कि मैं हिदाया जैसी चंद सतरें भी नहीं लिख सकता, इतने आला दर्जे की इबारतें हैं हिदाया की। तो लिहाजा मालूम हुआ ये जो साहिब हिदाया इबारत लाए हैं ये उनसे गलती नहीं हुई, बल्कि यहां पर याद रखो एक और अक्सर महजूफ निकाल लेंगे, यहां एक और अक्सर महजूफ निकाल लेंगे। किस तरह? इबारत क्या है? अल अक्सरो मीनल अकली, तो ये मीन से पहले एक और अक्सर निकाल लें। अल अक्सरो वो वाला अक्सर, वो जो दरमियान में है, अल अक्सर वो वाला अक्सर, अक्सरो मीनल अकली जो अकल से अक्सर है, जो अकल से अक्सर है। और इसी तरह अगला जुमला है वल अकल्लो मिनल अक्सरी, यहां अल अकल से क्या मुराद है? वो जो दरमियान में है, तो वो वाला अकल, यहां एक और अकल निकाल लेंगे वल अकल्लो अकल्लो मिनल अक्सरी, वो वाला अकल, अकल्लो मिनल अक्सरी जो अक्सर से अकल है। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मुराद बिही, के इससे मुराद जो है अल अक्सर मिनल अकली वल अकल मिनल अक्सरी, वो दरमियान में जो है जो कि अक्सर मिनल अकल है, जो अकल से ज्यादा है, वल अकल मिनल अक्सरी और जो अक्सर से कम है, यानी वो दरमियान वाला। फइन्नहुम यकूलूना, इसलिए क्योंकि अरब कहते हैं सिन्नी मिन सित्तीन इला सबईना, बाज लोगों से उम्र पूछी जाए अरबों से तो वो कहते हैं मेरी उम्र 60 से लेकर 70 तक है, तो इसका क्या माना होता है? मेरी उम्र 60 से लेकर 70 तक है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में है, मेरी उम्र 60 से लेकर 70 के बीच में है, यानी जो अकल जिक्र किया उसने यानी 60 इससे ज्यादा है, और जो अक्सर जिक्र किया यानी 70 उससे अकल है। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फइन्नहुम यकूलूना, इसलिए क्योंकि अरब कहते हैं सिन्नी मिन सित्तीन इला सबईना, के मेरी उम्र 60 से लेकर 70 तक है, वह मा बैना सित्तीन इला सबईना, या इस तरह कहते हैं कि मेरी उम्र वो है जो 60 और 70 के बीच में है, वह यूरीदूना बिही मादा कर ना हो, और इसके जरिए वो उसी का इरादा करते हैं जो हमने जिक्र कर दिया, दोनों के जो बीच है उसका इरादा करते हैं। वह इरादतुल कुल्ली फी मा तरीकहू तरीकुल इबाहती कमा जकारा। साहिबैन ने क्या जिक्र किया था कि अगर कोई शख्स किसी से कहता है मेरे माल में एक दिरहम से लेकर 100 तक तुम ले सकते हो जी। तो वहां कुल मुराद होता है, कुल भी ले सकते हो जी। कुल ले सकते हो, तवज्जो है। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से कि भाई ये जो कुल भी ले सकता है ये उस मकाम पर होगा जहां इबाहत होगी, जहां इबाहत होगी। देखो आप किसी शख्स के लिए अपना माल मुबाह कर रहे हैं कि तुम मेरे माल में एक से लेकर 100 दिरहम तक ले सकते हो जी। तो ये इबाहत के मौके में कुल भी ले सकता है, लेकिन बात तलाक की चल रही है और तलाक तो ममनू चीजों में से है, वो तो हाजत की वजह से शरीयत इजाजत देती है, वैसे तो तलाक की इजाजत नहीं। तो जो आपने मिसाल की वो इबाहत वाली सूरत में जिक्र की है और मसला तलाक का चल रहा है, तलाक तो ममनुआ चीजों में से है, तो लिहाजा आप इस ममनुआ चीज को इबाहत वाली चीज पर कियास नहीं कर सकते। जो कहते हैं वह इरादतुल कुल्लिफी मा तरीकुहू तरीकुल इबाहती, और कुल का इरादा उस चीज में होता है जिसका तरीका इबाहत वाला तरीका हो। कमा ज़करा, जैसे कि साहिबैन ने जिक्र किया, वल असलु फी तलाक हुवल हज़रु, और असल तो तलाक के अंदर मुमानअत है, उसमें तो इबाहत नहीं है, हज़र ज़ुआ के साथ है, भाई मुमानअत को कहते हैं। सुम्मल गायतुल उला, अब वही बात जिक्र कर रहे हैं कि गाया उला भी दाखिल करना पड़ेगा इमाम साहब के नजदीक, एक और तीन के बीच दूसरी तलाक है लेकिन दूसरी तो पहली के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए पहली भी हो जाएगी। तो कहते हैं सुम्मल गायतुल उला लाबुद्द अन तकूना मौजूदतन, फिर जरूरी है कि गाया उला जो है वो मौजूद हो, लिया तरतब अलैह सानियतु, ताकि इस पर दूसरी तलाक मुरतब हो सके। अगर पहली तलाक नहीं है तो दूसरी कैसे मुरतब हो सकती है, दूसरी के लिए हमेशा क्या चाहिए, पहले एक और तलाक चाहिए भाई। तो यह माना है सुम्मल गायतुल उला लाबुद्द अन तकूना मौजूदतन, फिर जरूरी है कि गाया उला जो है वो मौजूद हो, लिया तरतब अलैह सानियतु, ताकि इस पर दूसरी तलाक मुरतब हो सके। वह वजूदुहा बिवुकूइहा, और पहली का वजूद तो उसके वाके होने से ही होगा, पहली वाके होगी तो फिर ही पहली पाई गई, अब दूसरी भी आ सकती है, और जब तक पहली वाके नहीं हुई तो उसका वजूद भी नहीं है। तो कहते हैं वह वजूद हुआ बिवुकूइहा, और गाय उला जो है उसका वजूद तो बिवुकूइहा उसके वाके होने से होगा। बिखिलाफिल बैई, बखिलाफ बैअ के, इमाम जुफर ने बैअ का मसला जिक्र किया था, अगर कोई कहता है इस दीवार से लेकर उस दीवार तक मैंने जमीन आपको बेच दी तो वो दीवारें दाखिल नहीं होती, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई हम मसला जिक्र कर रहे हैं तलाक का, और तलाक के अंदर दूसरी तलाक आ ही नहीं सकती जब तक पहली तलाक ना हो गई, तो पहली का वजूद है ही नहीं, तो पहली का वजूद होगा तो फिर ही क्या आ सकती है दूसरी, लिहाजा वहां पहली को भी मानना पड़ेगा और फिर दूसरी को भी मानना पड़ेगा। लेकिन बैग के अंदर वो जो दीवारों का वजूद है वो तो पहले से है जी। वहां तो दीवारों का वजूद पहले से है, और यहां एक से लेकर तीन तक तलाक, यहां ना तो एक का वजूद है और ना तीन का वजूद है, तो लिहाजा दरमियान वाली तभी आ सकती है जब कम अज कम पहली तो पाई जाए जी। फर्क समझ में आया, वहां पर दोनों दीवारों का वजूद बैअ से पहले ही मौजूद है, और यहां एक से लेकर तीन, इसमें दूसरी तलाक से पहले एक का कोई वजूद नहीं, तो जब एक का वजूद नहीं है तो दूसरी कैसे आएगी, लिहाजा पहले एक को भी मानना पड़ेगा, और उसका वजूद तभी हो सकता है जब वो वाके तो हो, लिहाजा एक भी वाके होगी और फिर दरमियान वाली दूसरी भी वाके हो जाएगी। अगर इनका वजूद पहले से होता फिर तो गाया इत्तेदा दाखिल ना होता, लेकिन पहली का वजूद है ही नहीं तो लिहाजा उसका भी वजूद मानना पड़ेगा और वो भी वाके हो जाएगी। तो कहते हैं बिखिलाफिल बैई, बखिलाफ बैअ के लिए, अन्नल गायत फीही मौजूदतुन क़ब्लल बैअ, इसलिए क्योंकि गाया उसके अंदर बैअ से पहले ही मौजूद है। वलौ नवा वाहिदतुन युदय्यनु दियानतन, अब सूरत मसला ये इसी मसूरत में खावन ने क्या कहा, बीवी से कहा तुम्हें एक से लेकर तीन तक तलाक है, या तुम्हें तलाक है वो जो एक और तीन के बीच में है, दोनों का एक ही हुक्म है एक से लेकर तीन तक। इमाम साहब के नजदीक कितनी तलाकें हुई, दो, साहिबैन के नजदीक तीन हो गई, इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक एक हुई। अब उस शख्स से पूछा गया कि तुमने कितने की नीयत की थी, वो कहते हैं मैंने तो एक की नीयत की थी, तो कहते हैं दयानतन तो उसकी तस्दीक की जाएगी क्योंकि उसके कलाम में इसका इहतमाल है, जैसे इमाम जुफर भी जिक्र फरमाते हैं, लेकिन कजान उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि ये अपने फायदे की बात कर रहा है, दिलों में बदगुमानी आती है शायद ये झूठ बोल रहा होगा, इसका इसमें फायदा है एक तलाक के अंदर, इसलिए ये इसने कहा है मैंने एक का इरादा किया था, वरना तो इमाम साहब के नजदीक दो हैं और साहिबैन के नजदीक तीन हैं, तो लिहाजा ये वो नीयत बयान कर रहा है जिसमें इसका फायदा है, लिहाजा कजान उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी क्योंकि ये खिलाफ जाहिर है, ये खिलाफ जाहिर है, जाहिर इससे यही है कि दो या तीन तलाकें हुई हैं। एक नहीं, लेकिन वो एक की नीयत करके खिलाफ जाहिर की नीयत कर रहा है, लिहाजा कजाअन उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, ध्यानतन उसकी तस्दीक करेंगे। तो कहते हैं वलौ नवा वाहिदतन युदय्यनु दयानतन ला कजाअन, और अगर उसने एक की नीयत की तो उसकी दयानतन तस्दीक की जाएगी, ला कजाअन कजान तस्दीक नहीं की जाएगी। लिअन्नहु मुहतमलु कलामिही, भाई दयानतन क्यों तस्दीक करेंगे? कहते हैं लिअन्नहु मुहतमलु कलामिही, इसलिए क्योंकि ये एक भी उसके कलाम का मुहतमल है। लाकिन नहु खिलाफ जाहिरी, लेकिन ये खिलाफ जाहिर है, वो अपने लिए सबसे हल्की सूरत इख्तियार कर रहा है कि सिर्फ एक तलाक हुई है। भाई आगे देखिए वलौ काल अंति तालिकु वाहिदतन फी सिनतैनी वनव जर्ब वल हिसाब अव लम तकुन लहू नियतुन फहिया वाहिदा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, तुझे तलाक है दो में एक, वाहिदतन फी सिनतैनी दो में एक। तो उसने बीवी से कहा अंति तालिकुन तुझे तलाक है, वाहिदतन फी सिनतैनी दो में एक, वाहिदतन फी सिनतैनी, फी लेकर आया। और याद रखो ये फी जर्ब के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जैसे उर्दू में भी कहते हैं दो इकम दो, दो दुनी चार, दो में दो कितने हो गए चार, तीन में तीन जरब दें, तीन में तीन नौ, चार में चार सोलह। यानी अरबी में ये फी कभी जरब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब खावंद ने कहते हैं अगर कोई नियत नहीं की तो फिर इस सूरत में एक तलाक वाक़े हो जाएगी। अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, तुझे दो में एक तलाक है, और जरब की नियत कर रहा है फी के जरिए कि एक को जरब दी जाए किस में, दो में, एक को जरब दी जाए दो में। तो अगर इसने जरब की नियत की है या इसने कोई भी नियत नहीं की तो एक तलाक वाकई हो जाएगी जी। एक तलाक, वजह यह कि जरब देने से एक चीज के अज्जा बढ़ते हैं, उसके अफराद नहीं बढ़ते। एक को आप सौ से जरब दें तो इसका मतलब है आपने एक के सौ टुकड़े कर दिए, सौ हिस्से कर दिए, अज्जा बढ़ गए, वो एक बढ़कर सौ नहीं बन गया भाई। या आप दो को दस में जरब देते हैं, दो जरबे दस कितना हुआ बीस, इसका मतलब यह है आपने दो के बीस टुकड़े कर दिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दो बढ़कर कितना हो गया बीस हो गया, नहीं। तो जर्ब देने से अज्जा बढ़ते हैं एक चीज के, और जमा करने से अफराद बढ़ते हैं। दो और दो जमा करें तो कितना हुआ चार, अब अफराद बढ़ गए। जाब्ता समझ में आया क्या? जमा से अफराद बढ़ते हैं और जरब से अज्जा बढ़ते हैं। तो जब उसने कहा अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, तुझे तलाक है वाहिदतन फी सिनतैनी, एक को जरब दो किस में, दो में, तो एक को दो में जरब भी दे दें तो गोया एक के आपने दो टुकड़े कर दिए, दो जुज बना दिए, इससे तलाकों में कोई इजाफा नहीं हुआ, लिहाजा एक ही तलाक होगी। तो जरब की नियत करे फिर भी एक तलाक, और अगर कोई नियत ना करे फिर भी एक तलाक, फिर भी एक तलाक। भाई देखिए वलौ काल अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, और अगर कहा कि तुझे तलाक है दो में एक, वनव जर्ब वल हिसाब, और खावंद ने जर्ब और हिसाब की नीयत की, अवलम तकुन लहू नीयतुन, या खावंद की कोई नीयत नहीं थी, फहिया वाहिदतुन तो ये एक ही तलाक होगी। वकाल जुफर रहिमहुल्लाह तकाउ सिनतानी, और इमाम जुफर रहमल्ला फरमाते हैं दो वाके हो जाएंगी। इमाम जुफर फरमाते हैं दो वाके हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि एक को दो में जरब दिया जाए तो कितना बनता है दो, और आम लोगों के अंदर इसके जरिए जरब का इरादा किया जाता है। एक को दो में जरब देंगे तो उसको वो दो शुमार करते हैं, एक को तीन में जरब देंगे तो उसको तीन शुमार करते हैं, जरब का इरादा करते हैं लोग इसके जरिए। तो दो में दो कितनी हो जाएंगी चार, तीन में तीन कितनी हो जाएंगी नौ। तो इमाम जुफर फरमाते हैं इसमें लोगों के उर्फ को देखा जाएगा, जब एक आदत के साथ दूसरे आदत को फी के साथ जिक्र किया जाए तो वहां जर्ब मकसूद होती है जी। क्या मकसूद होती है? जर्ब। लिहाजा यहां भी दो में एक, दोनों के अंदर जर्ब मकसूद होगी और दो इकाम दो, लिहाजा यहां दो तलाकें हो जाएंगी। और याद रखना, याद रखना, ये उन मसाइल में से है जिनमें फतवा इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल पर है। इमाम जुफर रहमहुल्ला के इख्तिलाफात तो जगह जगह आप पढ़ते हैं, लेकिन चंद एक मसाइल ही हैं जहां फतवा उनके कौल पर होता है। इस मसले के अंदर भी फतवा उनके कौल पर है, इसलिए क्योंकि इसके जरिए उर्फ को देखा जाएगा एक में दो। आम लोग इसका क्या माना लेते हैं? तो आम लोग इसका माना जरब के लेते हैं, आम लोग इसका माना जरब के लेते हैं। तो एक को जब दो में जरब दी तो कितना हो गया? दो हो गया, लिहाजा दो तलाकें हो जाएंगी। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्लाह तकाउ सिंतानी, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं दो तलाकें वाके हो जाएंगी। ले उर्फिल हुस्साबी, हुस्साब भाई हिसाब वाले रियाजीदान जो हैं, ले उर्फिल हुस्साबी रियाजीदानों के उर्फ के मुताबिक। वह वकौल हसन इबन जियाद रहमहुल्लाह, और यही कौल है हसन इबन जियाद रहमहुल्लाह का भी। हसन इबन जियाद ये भी शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, तो यही कौल हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह का भी है। वलाना हमारी दलील यह है कि अन्ना अमल ज़र्ब फी तकसीरिल अज़ाई, के ज़र्ब का अमल जो है अज़ा के बढ़ाने में होता है, ला फी ज़ियादतिल मज़रूबी, मज़रूब के बढ़ाने में नहीं। मज़रूब जिसको ज़र्ब दी गई है, मज़रूब के अफराद नहीं बढ़ते, उसके अज़ा बढ़ जाते हैं। एक को आप सौ में जरब देंगे तो एक के गोया आपने सौ जुज कर दिए, खुद एक बढ़कर सौ नहीं हुआ भाई। ये यूं कहो, ये उन चीजों में है जिनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह नहीं होती, और तलाक भी ऐसी चीज है, तलाक की कोई लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं। वो किसको जिक्र कर रहा है? तलाक को जिक्र कर रहा है ना, अंति तालिकु वाहिदतन फी सिनतैनी, किसको जिक्र कर रहा है? तलाक को, और तलाक की कोई लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं है। तो लिहाजा जरब देने से उसके अज्जा बढ़ेंगे, अज्जा के बढ़ने से तलाकें नहीं बढ़ेंगी भाई। लेकिन अगर ऐसी चीज में इसको जिक्र किया जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई वगैरह है, फिर वो चीज भी बढ़ती है। मसलन जमीन अगर कोई शख्स जिक्र कर रहा है, जमीन जिक्र कर रहा है, वो आशारा फी आशारा है, क्या माना? दस जरबे दस गज है, दस को जरब दें दस से कितना बन गया? सौ गज। देखो सौ गज बन गई जमीन। और अगर कहे ईशरून फी ईशरीना, बीस में बीस गज है, तो ये कितने बन गए? चार सौ, चार सौ गज बन गई। तो देखो यहां मजरूब बढ़ रहा है, तो जिस चीज की लंबाई चौड़ाई हो वहां जर्ब से वो चीज बढ़ती है, वो चीज बढ़ती है। और जिस चीज की लंबाई चौड़ाई ना हो वहां उसके सिर्फ अज्जा बढ़ते हैं, और तलाक की भी लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो वहां जरब देंगे तो तलाक के अज्जा बढ़ेंगे। एक तलाक के आप सौ हिस्से करें चाहे हजार करें, है तो एक ही, तो वहां सिर्फ अज्जा बढ़ रहे हैं, खुद मजरूब नहीं बढ़ रहा। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्ना अमल ज़र्ब फी तकसीरिल अज़ाई, के ज़र्ब का अमल जो है उसके अज़ा बढ़ाने में है, ला फी ज़ियादतिल मज़रूबी, मज़रूब के ज्यादा करने में नहीं। व तकसीर अज़ाई तत्लीकति ला यूजिबु तअद्दुदहा, और एक तलाक के अज़ा का ज्यादा करना, ला यूजिबु तअद्दुदहा, वो इस तलाक के तअद्दुद को साबित नहीं करता। ला यूजिबु ऐ ला युस्बितु, तो एक तलाक के आप जितने भी अज्जा कर दें, है वो एक ही तलाक, एक से ज्यादा नहीं होगी भाई। तवज्जो है, ये माना है। वह तकसीर अज्जा इत्तलीकती, और एक तलाक के अज्जा को बढ़ाना, ला यूजिबु, ये साबित नहीं करता, तअद्दुदहा, उस तलाक के तअद्दुद को। फइन नवा वाहिदतन व सिनतैन, अब उसी में दूसरी सूरत, खावंद ने लफ्ज क्या जिक्र किया? अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैन। पहली सूरत क्या थी? उसने जर्ब का इरादा किया, दो भी हमारे नजदीक एक ही तलाक वाके होगी। इमाम जुफर फरमाते हैं दो होंगी, और फतवा किसके कौल पर? इमाम जुफर के। तो हमारे नजदीक जर्ब का इरादा करे तो भी एक, और कोई नियत ना करे फिर भी एक ही तलाक होगी। लेकिन अगर खावन से पूछा गया आपने क्या नियत की थी इन लफ्जों में, तो वो कहता है मैंने वाहिदतन व सिनतैन की नियत की थी। لفظ بول رہا ہے فی اور ارادہ کر رہا ہے واو کا. لفظ کیا بولا؟ واحدتن فی سنتینی, اور ارادہ کس کا کیا؟ واحدتن و سنتینی, ایک اور دو. تجھے طلاق ہے ایک اور دو, توجہ ہے؟ تو پھر اس صورت میں یاد رکھو, پھر اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی, کیونکہ ایک اور دو کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ تین, کیونکہ وہ بھی جمع کا فائدہ دیتا ہے, وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے. تو ایک اور دو کو جمع کریں گے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِن نَوَا وَاحِدَةً وَسِنْتَيْنِ, اور اگر خاوند نے اس کے ذریعے ارادہ کیا تھا وَاحِدَةً وَسِنْتَيْنِ کا, فَهِيَ سَلَاسٌ, تو یہ تین طلاقیں ہوں گی. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ, کیونکہ یہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے. یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ فی بمانے واؤ ہو. بھائی کس طرح فی بمانے واؤ ہو؟ کہتے ہیں اس لیے, ادھر دیکھیے, کہ فی آتا ہے ظرفیت کے لیے, اور ظرف اور مظروف جمع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں زید فی الداری, یہ فی کے ماں بعد ظرف ہوتا ہے. زید فی الداری, زید اس گھر میں ہے, تو معلوم ہوا الدار کیا ہے؟ ظرف. فی کا ماں بعد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. اور فی کا ماقبل مظروف ہے, اور زید اس گھر کے اندر ہے. جب زید اس گھر کے اندر ہے تو زید اور گھر اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے. زید اور گھر کیا ہو گئے؟ اکٹھے. تو مظروف جو ہے وہ ظرف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ وہ بھی جمع کا فائدہ دیتا ہے. میں کہتا ہوں جاءنی زیدن و عمرن, اس کا کیا معنی ہے؟ صرف زید آیا ہے یا زید اور عمر دونوں آئے ہیں؟ دونوں آئے ہیں. یہ وہ نے جمع کا فائدہ دیا, اس نے عمر کو زید کے ساتھ جمع کر دیا آنے میں. تو وہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جمع کا. اور ظرفیت بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ جمع کا, کہ مظروف ظرف کے ساتھ جمع ہو گیا ہے. لہذا فی کو واو کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے, کیونکہ واو میں بھی جمعیت والا معنی اور فی میں بھی جمعیت والا معنی ہے. تو کہتے ہیں فَإِن نَوَا وَاحِدَةً وَسِنْتَيْنِ, اگر خاوند نے وَاحِدَةً وَسِنْتَيْنِ کا ارادہ کیا, یعنی فی بول کر واو کا ارادہ کیا, فَهِيَ سَلَاسٌ, تو یہ تین طلاقیں ہوں گی. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ, اس لیے کیونکہ اس کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ فی کس معنی میں ہو, واو کے معنی میں ہو. یہ احتمال رکھتا ہے. بھئی کس طرح احتمال رکھتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ, اس لیے کیونکہ حرف واو جمع کے لیے آتا ہے. وَالظَّرْفُ يُجْمَعُ إِلَى الْمَظْرُوفِ, اور ظرف جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتا ہے مظروف کی طرف, یعنی اس کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے. وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةً, اور اگر وہ عورت غیر مدخول بِهَا تھی تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی. بھائی ادھر دیکھیے, اگر خامن نے بیوی سے کہا انت طالق واحدتن فی سنتین, اور ارادہ کس کا کیا؟ واو کا, کہ میرا ارادہ کیا تھا؟ انت طالق واحدتن و سنتین, اور عورت غیر مدخول بہا ہے. غیر مدخول, اور غیر مدخول بہا عورت آپ نے پڑھا ہے ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے. لہذا جب خامن نے کہا انت طالق واحدتن, ساتھ ہی ایک طلاق ہو گئی. اور آگے کہہ رہا ہے فی سنتینی, لیکن یہ کس معنی میں ہے؟ وسنتینی. تو ابھی وسنتینی خاوند نے نہیں کہا, اس سے پہلے ہی ایک طلاق ہو گئی, تو اگلی طلاقیں لغو چلی گئیں. اگر مدخول بہا ہوتی تو تین ہو جاتی, لیکن غیر مدخول بہا تو ایک سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے, لہذا ایک ہی طلاق سے وہ جدا ہو گئی اور باقی دونوں طلاقیں لغو چلی گئیں. یہ معنی ہے. ولو کانت غیر مدخول ان بیہا, اور اگر وہ عورت غیر مدخول بیہا ہے, یقع واحدتن, تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. کما فی قولہ واحدتن وسنتین, جیسے واحدتن فی سنتین کے اندر اگر خاوند نے واو کی نیت کی تو غیر مدخول بیہا کو ایک واقع ہوگی اور دو ضائع چلی جائیں گی. اور اگر فی کے بجائے خود واو کا لفظ خاوند ذکر کرتا اور یوں کہتا انت طالق واحدتن وسنتین, تب بھی غیر مدخول بہا پر ایک نہیں واقع ہونا تھا, تب بھی ایک ہی واقع ہوگی, ایک سے جدا ہو گئے, ساتھ ہی اگلی دونوں طلاقیں بھی آئیں لیکن وہ لغو چلی گئیں. تو کہتے ہیں ولو کانت غیر مدخول بہا, اور اگر غیر مدخول بہا عورت ہوتی, یقع واحدتن, تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی. کما فی قولہ, جیسے کہ خاوند کے اس قول کے اندر ہے واحدتن وسنتین, اگر یہ خود واو کو یعنی خود ذکر کرتا अभी तो वो कह रहा है मैंने इरादा इस वाव का किया है, और अगर खुद वाव को लफ्जों में जिक्र भी करता तो भी एक से ही गैर मदखूल बिहा ने बायना हो जाना था। वह इन नवा वाहिदतम मासिनतैन, तीसरी सूरत, खावन ने बीवी से कहा अंत तालिकूं वाहिदतन फी सिनतैनी, और उसे पूछा गया भाई आपने क्या नियत की थी इस कलाम से, वो कहते हैं मैंने फी के जरिए मा का इरादा किया था, आई वाहिदतन मा सिनतैनी, तो कहते हैं उसका यह इरादा ठीक है, इस सूरत में भी तीन तलाकें हो जाएंगी क्योंकि फी बमाने मा के कलाम अरब में इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं वह इन नवा वाहिदतम मा सिनतैनी, और अगर खावन ने एक नियत की वाहिदतम मा सिनतैनी एक दो के साथ या काउस सलासु, तो तीन तलाकें वाक हो जाएंगी। लि अन्न कलिमत फी ताती बिमाना मा, इसलिए क्योंकि फी कलिमा जो है यह आता है मा के माना में, कमा फी कौल ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला के इस कौल में है फद खुली फी इबादी आई मा इबादी, फद खुली फी इबादी आई फद खुली मा इबादी, तो यहां जैसे फी मा के माना में है। याद रखिए ये बास मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फद खुली फी इबादी, ये जो फी है ये बमाना मा के है, जबकि बास फरमाते हैं नहीं ये फी अपने ही माना में है। बात समझ में आ गई, लेकिन बहरहाल फी मा के माना में कलाम अरब में आता रहता है भाई। आगे देखिए वलौ नवा जारफा जी, इसी में अगली सूरत आ गई, यही लफ्ज कहे अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, और उससे पूछा तुमने क्या नियत की थी, कहते हैं मैंने जर्फ की नियत की थी कि फी जिस पर दाखिल हो रहा है वो जर्फ है माकबल के लिए, जैसे जैदुन फी दार, ये फी का माबाद क्या अदार, ये जर्फ है किसके लिए माकबल यानी जैद के लिए, जैद घर में है, तवज्जो है, तो लिहाजा उसे खावन से पूछा गया कि वाहिदतन फी सिनतैनी आप फी लेकर आए हैं फी जरफियत के लिए आता है आपने क्या नियत की थी, वो कहते हैं मैंने जरफियत ही की नियत की थी, तो आपको बताएंगे कि भाई नहीं तलाक जो है तलाक ये तो एक सिफत का नाम है, तलाक का कोई अपना अलग वजूद है ही नहीं, लिहाजा दो तलाकें एक तलाक के लिए जर्फ नहीं बन सकती भाई। अंत तालिकुं वाहिदतन फी सिनतैनी, इस वाहिदा से भी क्या मुराद तलाक, सिनतैनी से भी क्या मुराद तलाक, उसने कहा मैंने ये फी के जरिए जरफियत का इरादा किया है कि दो तलाकें जर्फ हैं किसके लिए वाहिदतन एक तलाक के लिए, तो कहते हैं इस सूरत में एक ही तलाक वाक होगी और फी सिनतैनी लग्व चला जाएगा, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो जर्फ बनने की सलाहियत नहीं रखती। तो कहते हैं वलौ नवा जर्फ यकउ वाहिदतुन, अगर खावन ने इस नतैन के जर्फ होने की नीयत की तो एक ही तलाक वाक़े होगी। लिअन्न तलाक ला यसलुहु जर्फन, इसलिए क्योंकि तलाक जर्फ बनने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि तलाक तो एक सिफत का नाम है, इसका तो अपना अलग कोई वजूद ही नहीं है, यह जर्फ कैसे बन सकती है। फयलगु जिक्रु सानी, तो दूसरी तलाक यानी फी इस्नतैन ये सारा लग्व हो जाएगा। तो कहते हैं फयलगु जिक्रु सानी, तो दूसरी तलाक का जिक्र लग्व हो जाएगा। देखो कई सूरतें जिक्र कर दी, खावन ने लफ्ज क्या बोला था अंति तालिकुं वाहिदतन फी सिनतैनी, अगर खावन ने कोई नियत नहीं की बस ये लफ्ज बोल दिए तो एक तलाक हो जाएगी, और अगर उसने जर्ब की नियत की तो फिर भी एक होगी, लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं दो होंगी और उनके कौल पर फतवा है भाई, तो फिर दो हो जाएंगी, और अगर उसने फी के जरिए वाव का इरादा किया है तो फिर तीन तलाकें हो जाएंगी, और अगर उसने फी के जरिए मा का इरादा किया है तो इस सूरत में भी तीन तलाकें हो जाएंगी, और अगर खावन ने फी के जरिए इसके जर्फ होने का इरादा किया कि दो तलाकें जर्फ बन जाए एक के लिए, कहते हैं इस सूरत में एक ही होगी क्योंकि तलाक जर्फ नहीं बन सकती। तफसील समझ में आ गई। आगे देखिए वलौ काल इस्नतैनि फिस्नतैन, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इस्नतैनि फिस्नतैन, दो में दो, पहले तो था वाहिदतन फिस्नतैन, अब है इस्नतैनि फिस्नतैन, दो में दो, तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस किस्म के कलाम के जरिए जर्ब का इरादा किया जाता है, किसका जर्ब, तो दो को दो में जर्ब दें तो चार हो गई, तो लिहाजा ये तकाजा तो ये कर रहा है चार तलाकें होनी चाहिए, लेकिन तलाकें तो ज्यादा से ज्यादा हैं ही तीन, लिहाजा तीन वाके हो जाएंगी। तवज्जो है। तो कहते हैं वलव काल अस्नतैनी फिस्नतैनी, और अगर खामन ने इस्नतैनी फिस्नतैन को जिक्र किया, वनवा ज़र्ब वल हिसाब, और उसने ज़र्ब और हिसाब की नीयत की, फहिया सिंतानी, तो हमारे अइमा के नजदीक दो होंगी। वाइंदा जुफर रहमहुल्लाह सलासुन, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह के नजदीक तीन होंगी। हमारे नजदीक अगर ज़र्ब का इरादा किया तो दो को दो में ज़र्ब देंगे, तो इससे अजज़ा बढ़ेंगे, तलाकें नहीं बढ़ेंगी, लिहाजा तलाकें दो ही होंगी। लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं तीन होंगी। तो कहते हैं वाइंदा जुफर रहमहुल्लाह सलासुन, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह के नजदीक तीन तलाकें होंगी। लिअन्ना क़ज़ियतहु अन यकूना अरबअन, क़ज़िया ये लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका है, क़ज़िया बमाने मुक्तज़ा के और हुक्म के, क़ज़िया का क्या माना, मुक्तज़ा और हुक्म। कहते हैं लिअन्ना क़ज़ियतहु, कहते हैं इसलिए क्योंकि खावन के इस कौल का मुक्तज़ा यह है, अन यकूना अरबअन, की कितनी तलाकें होनी चाहिए, चार। लेकिन ला मजीद अलितलाक अलसलासी, लेकिन तलाक तो तीन पर जायद नहीं हो सकती, तो लिहाजा इसलिए तीन हो जाएंगी। वह इंदना, और हमारे नजदीक अल एतबार उलिल मजकूर अव्वली, के पहले लफ्ज जो जिक्र किया उसी का एतबार है। पहला मसला क्या पीछे जिक्र हुआ था, आंते तालिकों वाहिदतन फिस्नतैनी, जर्ब का इरादा किया है, तो हमारे नजदीक वाहिद के अज्जा बढ़ेंगे, उसकी तलाकें नहीं बढ़ेंगी, तो वाहिद यानी पहले लफ्ज का एतबार है, अब वही तलाक होगी। और यहां क्या कहा है, अंतितालिकुन इस्नतैनी फिस्नतैनी, तो पहला लफ्ज इस्नतैन का एतबार है, जब जर्ब का इरादा किया है तो इस्नतैन का एतबार है, तो दो तलाकें होंगी। बात समझ में आ। तो कहते हैं वाइंदना, और हमारे नजदीक अल एतबार उलिल मजकूर अल अव्वली, के एतबार जो है मजकूर अव्वल का है, अलामा बयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि ज़र्ब देने से अज्ज़ा बढ़ते हैं, अफराद नहीं बढ़ते। वलव काल अंत तालिकुम मिन्हा हुना इला शाम, सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा तुम्हें यहां से लेकर मुल्क शाम तक तलाक है, यहां से लेकर मुल्क शाम तक तलाक है, तो अब ये कौन सी तलाक होगी, रजई होगी या बाइन होगी। तो इमाम जुफर फरमाते हैं इसने तलाक को लंबा कर दिया, मालूम है तलाक में कुव्वत आ गई, जब कुव्वत आ गई अब रजई नहीं होगी बाइन होगी, क्योंकि रजई में कुव्वत नहीं है, तलाक बाइन में कुव्वत है, वो निकाह को तोड़ देती है, जबकि हमारे नजदीक तलाक रजई होगी। हम कहते हैं कि इसने तलाक को लंबा नहीं किया, छोटा कर दिया, इसलिए क्योंकि जब खावन बीवी को तलाक देता है तो दुनिया के हर जगह जहां भी वो औरत चली जाए वो तलाक वाली है, तो वो औरत तो तलाक के साथ मौसूफ हो रही थी दुनिया के हर कोने में, लेकिन खावन ने क्या कहा, यहां से लेकर मुल्क शाम तक, तो उसने तो तलाक को छोटा कर दिया भाई। तो कहते हैं वलव काल अंति तालिकुम मिन्हा हुना इला शाम, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है यहां से लेकर मुल्के शाम तक, फहिया वाहिदतुन यमलिकुर रजअता, तो हमारे नजदीक ये एक ही तलाक होगी, यमलिकुर रजअता, और खावन जो है रुजो का मालिक होगा, क्योंकि तलाक छोटी कर दी उसने। वकाल जुफर रहमहुल्लाह अब्बा इनतुन, और इमाम जुफर फरमाते हैं ये तलाक बाइन होगी, लिअन्नहु वसफत तलाक बितूली, इसलिए क्योंकि खावन ने तलाक को मौसूफ किया है लंबाई के साथ। कुल ना ला, हम कहते हैं नहीं, बल वसफहु बिल कसरी, कि खावन ने तलाक को मौसूफ किया है बिल कसरी, छोटा होने के साथ, लंबा होने के साथ नहीं बल्कि छोटा होने के साथ, क्योंकि तलाक जब दी है तो तलाक तो पूरी दुनिया में हर जगह होनी चाहिए थी, लेकिन खावन ने सिर्फ कहां तक महदूद कर दिया, मुल्क शाम तक। तो कुल ना ला, हम कहते हैं नहीं, उस खावन ने तलाक को लंबाई के साथ मौसूफ नहीं किया, बलवा सफाहू बिल कसरी, बल्कि उसको छोटा होने के साथ मौसूफ किया है। लिया नहु मता वका वकाफिल अमाकिनी कुल्लिहा, इसलिए क्योंकि जब तलाक वाके हो जाती है तो वकाफिल अमाकिनी कुल्लिहा, तो वह तमाम जगहों के अंदर वाके होती है, सिर्फ शाम तक नहीं रहती बल्कि तमाम जगहों में वाक हो जाती है। वलव काल अंत तालिकुम भी मक्का औफी मक्का, सूरत मसला ये, खामन ने बीवी से कहा अंत तालिकुन भी मक्का, तुझे तलाक है मक्का में, तो बाब माने फी के है, अंत तालिकुन भी मक्का आई फी मक्का, याद फी ही को ले आता है खामन, अंत तालिकुन फी मक्का, तो याद रखो हमारे फुकाहा फरमाते हैं उसी वक्त तलाक हो जाएगी। भाई क्यों, उसने तो मक्का की कैद लगाई है। कहते हैं भाई तलाक को किसी मकान के साथ खास नहीं किया जा सकता, तलाक जब होती है वो हर जगह होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस जगह में जाए तो तलाक वाली है औरत, उससे निकले तो तलाक वाली ना हो, ऐसा नहीं। तलाक किसी जगह के साथ खास नहीं हो सकती भाई, तो लिहाजा उसी वक्त तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वला उकाल, अगर खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन बि मक्कता व फी मक्कता, कि अंति तालिकुन बि मक्कता कहा या अंति तालिकुन फी मक्कता कहा, फही तालिकुन फिल हाल फी कुल्लिल बिलादी, तो इस औरत को तलाक हो जाएगी फिल हाल ही फी कुल्लिल बिलादी, तमाम शहरों में जहां कहीं भी हुई तलाक हो जाएगी। वह कदालिक लव काला, और इसी तरह है अगर खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन फी दारी, कि तू तलाक वाली है फी दारी उस घर में, अद्दार अलिफ लाम के साथ लाए, कोई खास घर था उसकी तरफ इशारा किया, अंति तालिकुन फी दारी कि तू तलाक वाली है उस घर में, तो भाई ये तो तलाक को खास कर रहा है जगह के साथ, और तलाक तो जगह के साथ खास नहीं होती, लिहाजा उसी वक्त तलाक हो जाएगी भाई। तो कहते हैं वकदालिक लौ काल अंति तालिकुन फी दारी, और इसी तरह है अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन फी दार, लिअन्न तलाक ला यतखस्सु बिमकानिन दूना मकानिन, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो ऐसी नहीं है कि वो खास हो जाए बिमकानिन एक जगह के साथ, दूना मकानिन न के दूसरी जगह के साथ, तलाक ऐसी नहीं है कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह के साथ क्या हो जाए खास हो जाए। वह इन आना भी ईदा आतई थी मक्का था, अगर खावन से पूछा गया तुमने क्या इरादा किया था अंति तालिकुन बी मक्का था या अंति तालिकुन फी मक्का था, वो कहता है मेरा मतलब यह था कि वो जब मक्का में आएगी, ईजा आतई थी भी मक्का था, जब तू मक्का में आएगी तो तब तुझे तलाक है। तो कहते हैं इस सूरत में दयानतन तो तस्दीक की जाएगी, कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि वो फेल को मुकद्दर निकाल रहा है, इजा अतैती मक्का, तो फेल को मुकद्दर निकाल रहा है और ये खिलाफ जाहिर है, जब ये खिलाफ जाहिर है तो दयानतन तो उसकी तस्दीक करेंगे लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं करेंगे। तो कहते हैं वह इन आना भी ही ईदा अतई थी मक्का था, और अगर खामन ने इसके जरिए इरादा किया ईदा अतई थी मक्का था, जब तू मक्का में आ जाए तो युसद्दकु दियानतन, तो दियानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, यानी ये उसके और अल्लाह का मामला है, हम तस्दीक कर देंगे। लकजान, लेकिन अगर काजी के पास मसला गया तो काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा। लिअन्नहु नवल इजमारा, इसलिए क्योंकि खावन ने इजमार का इरादा किया है, यानी फेल को मुकद्दर किया है, इजमार का माना भी मुकद्दर करना, लिअन्नहु नवल इजमारा, क्योंकि खावन ने फेल को मुकद्दर करने का इरादा किया है, वह खिलाफ जाहिरी, और ये खिलाफ जाहिर है। वलौ काल अंति तालिकुन इदा दखल ती मक्का ता, जी दूसरी सूरत, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इजा दखल ती मक्का ता, तुझे तलाक है जब तू मक्का में दाखिल हो, कहते हैं अब तलाक मुअल्लक हो गई दुखूल मक्का के साथ, क्योंकि तलाक को उसने जगह के साथ नहीं खास किया, दुखूल के साथ खास किया है, मक्का में दाखिल होना एक फेल है, तो जब मक्का में दाखिल होगी तब तलाक होगी, उससे पहले तलाक नहीं। तो तलाक को जमाने के साथ भी आप मुअल्लक कर सकते हैं, खावन बीवी से कहता है तुम्हें 10 तारीख को तलाक है तो 10 को ही होगी, उससे पहले यह वाली तलाक वाकई नहीं, तो जमाने के साथ भी तलाक को मुअल्लक किया जा सकता है, और फेल के साथ भी, मसलन खावन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो देखो उस घर के अंदर जाने से क्या होगी, तलाक वाकई हो जाएगी। तो लिहाजा तलाक को जमाने के साथ भी मुअल्लक किया जा सकता है और फेल के साथ भी, लेकिन जगह के साथ उसको मुकय्यद नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वलौ काल अंति तालिकुन इजा दखल ती मक्का ता, याद रखो ये जो मक्का का लफ्ज है ये गैर मुनसरिफ है भाई, एक अलम है नाम है शहर का और दूसरा इसमें ता है तानीस वाली, तो ये गैर मुनसरिफ है और नीज इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं करते भाई। तो कहते हैं वलौ काल अंति तालिकुन इजा दखल ती मक्का ता, खावन ने बीवी से कहा तुझे तलाक है जब तू मक्का में दाखिल हो, तो कहते हैं लम तुतल्लक हत्ता तदखुल मक्का ता, उस औरत को तलाक नहीं होगी यहां तक कि वो मक्का में दाखिल हो जाए, लिअन्नहु अल्लकहु बिद्दुखूल, क्योंकि खावन ने तलाक को मुअल्लक कर दिया है मक्का में दाखिल होने के साथ। वलौ काल फी दुखूलिका दारा, और अगर खावन ने फी का लफ्ज जिक्र किया, मसलन यूं कहता है अंति तालिकुन फी दुखूली का दारा, कि तुझे तलाक है फी दुखूली का दारा, उस घर में तेरे दाखिल होने में, उस घर में तेरे दाखिल होने में तुझे तलाक है, तो फिर इस सूरत में भी याद रखो ये फी आता है जरफियत के लिए, फी आता है मा कबल मजरूफ होता है और मा बाद जर्फ। तो अंत तालिकुन फी दुखूली का, तो ये दुखूल जर्फ बन रहा है किसके लिए, तलाक के लिए। दुखूल क्या बन रहा है, जर्फ बन रहा है तलाक के लिए, लेकिन दुखूल तो एक फेल का नाम है, दाखिल होना तो क्या है, एक फेल है, और फेल फेल तो एक सिफत का नाम है, इसका तो अपना अलग कोई वजूद नहीं होता, यह जर्फ नहीं बन सकता। जब यह जर्फ नहीं बन सकता तो फिर इसको शर्त पर महमूल करेंगे। तवज्जो है क्या, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन फी दुखूली का दारा, तो फी को किस पर दाखिल किया, दुखूल मस्तर पर, और मस्तर यानी मस्तर जो है उसका तो अपना अलग कोई वजूद नहीं, जब अपना अलग वजूद नहीं तो वो जर्फ नहीं बन सकता तलाक के लिए, कि दुखूल के अंदर तलाक पाई जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ यहां फी जरफियत के लिए नहीं हो सकता, जब फी जरफियत के लिए नहीं हो सकता तो फिर इसको शर्त के लिए करार दे देंगे जी। फिर फी को शर्त के लिए करार दे देंगे। तो खामन ने क्या कहा, अंति तालिकुन फी दुखूली का दारा, माना यह है कि तुझे तलाक है अगर तू उस घर में दाखिल हुई, शर्त बना देंगे, क्या बना देंगे, अगर तू उस घर में दाखिल हुई, क्योंकि शर्त और जर्फ में मुनासबत मौजूद है, शर्त और जर्फ में मुनासबत मौजूद है। जैसे मशरूत बगैर शर्त के नहीं हो सकता, इसी तरह मजरूफ भी बगैर जर्फ के नहीं हो सकता। मजरूफ कहते ही उसको है जिसके लिए कोई जर्फ हो, मशरूत कहते ही उसको है जिसके लिए कोई शर्त हो। तवज्जो है, तो जैसे मजरूफ के लिए जर्फ जरूरी, इसी तरह मशरूत के लिए शर्त जरूरी है, तो देखो दोनों में मुनासबत आ गई, लिहाजा यह फी जब जरफियत के लिए नहीं हो सकता तो हम इसको शर्त के लिए करार दे देंगे, और अब वो औरत उस घर में जाएगी तो फिर ही तलाक वाकई होगी, वैसे वाकई नहीं होगी। वलौ काला, और अगर खावन ने कहा फी दुखूली का दारा, कि तुझे तलाक है उस घर के अंदर दाखिल होने में, यह ताल्लुक बिल फेली, तो इस सूरत में तलाक का ताल्लुक इस फेल यानी दुखूल के साथ हो जाएगा। लि मुकारनतिम बैन शर्ती व जर्फी, इसलिए क्योंकि मुनासबत पाई जाती है शर्त और जर्फ के दरमियान, लिमुकारनतिम बैन शर्त व जर्फी, शर्त और जर्फ के दरमियान मुनासबत की वजह से, फहुमिला अलैही, तो शर्त पर ही इस फी को महमूल किया जाएगा, इंदा ताअज़्ज़ुरि ज़र्फियति, जब जरफियत मुतअज़्ज़िर हो जाए, जब जर्फ होना मुमकिन न रहे तो फिर इसको शर्त पर महमूल किया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि फेल यानी मस्तर उसका अपना अलग कोई वजूद नहीं है, वो तो एक सिफत का नाम है, वो जर्फ नहीं बन सकता, और खामन तो फी के जरिए जर्फ बनाने की कोशिश कर रहा है। अंति तालिकुन फी दुखूली का दारा, तो फिर जब दुखूल जर्फ नहीं बन सकता तो फिर शर्त बन जाएगा भाई। आगे देखिए, फसलुन फी इजाफति तलाकी इला जमानी, यह फसल है तलाक की निस्बत करने में, इला जमानी जमाने की तरफ, इजाफत का क्या माना, निस्बत, तो इस फसल में बयान करेंगे अगर जमाने की तरफ तलाक की निस्बत की जाए तो उसका क्या हुक्म है भाई। तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुन गदन, याद रखो गदन आने वाले कल को कहते हैं अरबी जुबान में, उर्दू जुबान में तो गुज़श्ता दिन जो गुजरा है उसको भी कल कहते हैं, और जो आने वाला दिन है उसको भी कल कहते हैं। मसलन मैंने आपसे पूछा जैद कब आया था, आप कहते हैं जैद कल आया था, मालूम है गुज़श्ता कल मुराद है। और या आप किसी से कहते हैं मैं कल आपके पास आऊंगा, देखो इससे आने वाला कल मुराद है। लेकिन अरबी जुबान में दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। गुज़श्ता कल के लिए अरबी में अमसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अतैतु का अमसी, मैं आपके पास आया था गुज़श्ता कल। और आने वाले कल के लिए गदन का लफ्ज बोलते हैं, आती का गदन, मैं कल आपके पास आऊंगा। तो एक खावंद है, उसने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन गदन, तुम्हें कल तलाक है, तुम्हें कल तलाक है तो याद रखो इस सूरत में अगला दिन जैसे ही शुरू होगा फजर के वक्त पहली ही घड़ी में इस औरत को फौरन तलाक हो जाएगी, पहले लम्हे में ही फौरन तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वलौ काल अंत तालिकुन गदन, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे कल तलाक है, वका अलैहा तलाक बितुलुइल फजरी, तो इस औरत को पर तलाक वाके हो जाएगी फजर तुलु होते साथ ही, لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، भाई क्यों कल क्यों तलाक फजर के वक्त वाके हो जाएगी, इसलिए क्योंकि कहते हैं खावन ने कहा अंति तालिकुन गदन, अंति तालिकुन तू तलाक वाली है, गदन कल यानी कल के दिन तू तलाक के साथ मौसूफ है, यह तकाजा करता है कि वो सारा दिन तलाक के साथ मौसूफ हो जी। वो सारा दिन और सारा दिन तलाक के साथ मौसूफ होने की यह सूरत है कि फजर में ही तलाक वाके हो जाए, अब सारा दिन वो औरत तालिकुन है तलाक वाली है, और उसने भी क्या कहा था अंति तालिकुन गदन कि तू कल तलाक वाली है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु वसफहा बित्तलाकी फी जमीउल गदी, इसलिए क्योंकि खावन ने इस औरत को मौसूफ किया है तलाक के साथ फी जमीउल गदी, फी जमीउल गदी कल के सारे दिन में, वदालिक बिवुकूइही फी अव्वल जुज़्इन मिन्हु, और ये कल के अव्वल जुज़ में वाके होने से ही होगा कि कल के अव्वल जुज़ में तलाक वाके होगी, तो फिर ही हम कह सकते हैं ये औरत सारा दिन तलाक वाली रही। भाई वलव नवाबी ही आखिरा नहारी, भाई इसी के अंदर खावन से पूछा गया आपने क्या नीयत की है, कहते हैं मैंने तो इरादा किया था कल के आखिरी जुज में तलाक हो, तो कहते हैं दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, इसलिए क्योंकि उसने गदन अंति तालिकुन गदन कहा था, और गदन यानी कल, और ये जर्फ है अंति तालिकुन के लिए, कल का दिन क्या है तलाक के लिए जर्फ है कि इस दिन में औरत तलाक के साथ मौसूफ होगी, इस जमाने के अंदर औरत तलाक के साथ मौसूफ होगी, तो यह गदन यह जर्फ है, और यह शख्स जो कह रहा है कि मैंने कल शाम की नीयत की थी तो यह खास की नीयत कर रहा है आम के अंदर, और आम के अंदर खास की नीयत सही है। एक शख्स लफ्ज आम बोलता है और इरादा किसका करता है खास का, मसलन एक आदमी कहता है ला आकुलू तआमन, अब तआम देखो नकेरा है, माना क्या है मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, मसलन वो कसम उठा के कह लेता है मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर कहता है भाई मेरी नीयत तो फुला खाने की थी, अब तआम का लफ्ज उसने आम जिक्र किया था, यह हर खाने को शामिल है, लेकिन नीयत किसकी कर रहा है वो खास खाने की, तो आम के अंदर खास की नीयत इंसान कर सकता है, आम के अंदर क्योंकि ताम आम था, हर खाना इसके अंदर शामिल था, हत्ता कि जिसकी ये नीयत कर रहा है ये भी इसके अंदर दाखिल था, इसने कहा मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, मालूम हुआ ये वाला खाना भी नहीं खा सकता, लेकिन ये कहता है मेरी तो सिर्फ इस खाने की नीयत थी, ये वाला नहीं खाऊंगा बाकी खाने में खा सकता हूं, तो अब वो आम के अंदर तख्सीस कर रहा है, और आम के अंदर तख्सीस नीयत के जरिए जायज है, लेकिन दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है, यह अपने फायदे की बात कर रहा है। उसने क्या कहा था बीवी से अंति तालिकुन गदन, इसका क्या तकाजा है फजर होते ही फौरन तलाक हो जाए, लेकिन यह कहता है मेरी तो नीयत है दिन के आखिरी लम्हे में जाकर तलाक हो, यानी जब बिल्कुल सूरज डूबने लगे, तो अब दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन नहीं, मालूम हुआ ये एक दिन और बीवी को अपने पास रखना चाहता है, बदगुमानी दिलों में आती है, बात समझ में आ गई। कहते हैं वलौ नवा बिही आखिरन नहारी, और अगर उस शख्स ने दिन के आखिर की नीयत की सुद्दीका दयानतन ला कजाअन, तो दयानतन तो उसकी तस्दीक की जाएगी, कजाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, लिअन्नहु नवत तख्सीस फिल उमूम, इसलिए क्योंकि उसने उमूम के अंदर तख्सीस की नीयत की है, वह हुआ यहतमिलुहू, और यह इसका इहतमाल भी रखता है, उमूम के अंदर तख्सीस की जा सकती है, वकान मुखालिफन लिज़ाहिरी, लेकिन यह जाहिर के मुखालिफ है उसकी यह नीयत, तो लिहाजा कजाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। वलौ काल अंत तालिकुनिल यौमा गदन, अब दूसरी सूरत, दो जर्फ इकट्ठे जिक्र करता है एक आदमी, अंती तालिकुन अल्यौमा गदन, तुझे तलाक है अल्यौमा आज, गदन कल, दो जर्फ जिक्र कर रहा है आज भी और कल भी। तो याद रखो इस सूरत में जो पहला जर्फ है उसका एतबार होगा, जो पहला जर्फ है उसका एतबार होगा और दूसरा लग्व चला जाएगा। लिहाजा अगर अल्यौम को पहले जिक्र किया, आंती तालिकुन अल्यौमा गदन, तो अल्यौम का एतबार है लिहाजा उसी वक्त तलाक हो जाएगी, तवज्जो है। और अगर पहले गदन को जिक्र किया, आंती तालिकुन गदन अल्यौमा, तो फिर तलाक अगले दिन होगी, अल्यौमा आगे जो आया वो लग्व चला जाएगा। भाई क्या वजह है ये लग्व क्यों चला जाएगा? कहते हैं देखो, जब उसने कहा आंती तालिकुन अल्यौमा, आंती तालिकुन अल्यौमा, तो मालूम हुआ वो इस तलाक को फौरी वाके करना चाह रहा है। तो मालूम हुआ यहां तंजीज है। मैंने बताया तंजीज का क्या माना है, किसी चीज को पूरा करना, यानी तलाक को फौरी वाके करना। तो जब उसने कहा अंती तालिकुन अल्यौमा, तो अल्यौम लफ्ज ने बताया कि यहां वो तंजीज का इरादा कर रहा है, यानी फौरी तलाक वाके करने का इरादा कर रहा है, लिहाजा फौरी तलाक वाके हो गई। और आगे जब उसने गदन कहा, तो गदन से पता चला वो तलाक फौरी वाके नहीं करना चाह रहा बल्कि अगले दिन वाके करना चाह रहा है। तो पहले लफ्ज ने क्या बताया कि वो तंजीज का इरादा कर रहा है, यानी तलाक मुनज्जस है, और मुनज्जस तलाक इजाफत का इहतमाल नहीं रखती। मुनज्जस जो फौरी वाके हो जाए, जो फौरी वाके होने वाली है वो तलाक, वो इजाफत का इहतमाल नहीं रखती। भाई वो तो मुनज्जस है, आपने मुनज्जस उसको कर दिया है, या तो आप तलाक को मुनज्जस बनाएंगे या आप उसकी इजाफत करेंगे, दो चीजों में से एक हो सकता है। अगर आपने उसको अल्यौम पहले जिक्र किया तो आपने तलाक को मुनज्जस कर दिया, यानी फौरी वाके होने वाली बना दिया। जब फौरी वाके होने वाली तलाक बन गई, आप इसकी इजाफत अगले किसी वक्त की तरफ नहीं हो सकती, ये फौरी वाके होगी। और अगर आप गदन को पहले लाते, अंति तालिकुन गदन, तो आपने तलाक की इजाफत कर दी, मालूम हो यह तलाक अब कब वाके होगी। फिर समझो, फिर समझो, पहले अल्यौम को जरा ले आए, अंति तालिकुन अल्यौमा, यह अल्यौम ने क्या बताया कि यह अंति तालिकुन से कौन सी तलाक है, मुनज्जज है, जो फौरी वाके होने वाली है, क्या है, जो फौरी वाके होने वाली है। और आगे गदन का लफ्ज़ लाकर क्या करना चाहता है, इस तलाक की निस्बत कल की तरफ करना चाहता है कि कल वाके हो जाए। नहीं, जो तलाक मुनज्जज है उसकी किसी और वक्त की तरफ इजाफत और निस्बत नहीं हो सकती, वो तो अल्यौम ने पहले उसको मुनज्जज बना दिया, तलाक वाके हो गई भाई, अब आप इसकी इजाफत कल के दिन की तरफ नहीं कर सकते। और दूसरी सूरत, अगर गदन पहले ले आए, अंति तालिकुन गदन, और फिर अल्यौम भी कहता है, तो जैसे ही कहा अंति तालिकुन गदन अल्यौमा, देखो वो मुसलसल लफ्ज बोलता चला जा रहा है, लेकिन अंति तालिकुन गदन कहते ही ये अंति तालिकुन की इजाफत कल की तरफ चली गई, और अल्यौम आगे आ गया, वो इसको मुनज्जस करना चाहता है, लेकिन जब एक दफा तलाक की इजाफत जमाने की तरफ हो गई, अब आप उसको मुनज्जस नहीं बना सकते। तलाक तो एक ही अंति तालिकुन, दूसरी तो है नहीं, तो एक वक्त में एक ही, या वो मुनज्जस हो सकती है या मुजाफ हो सकती है जमाने की तरफ। अगर आपने पहले मुनज्जस कर दिया तो वाके हो गई, अब इजाफत नहीं हो सकती। और अगर आपने इसको पहले मुजाफ कर दिया और फिर मुनज्जस बनाना चाहते हैं, नहीं, एक तलाक थी वो, जब मुजाफ हो गई एक जमाने की तरफ, तो अब आप उसको फौरी वाके नहीं कर सकते। तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुन अल्यौमा गदन, और अगर खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन अल्यौमा गदन, देखो दो ज़र्फ़ जिक्र कर रहा है, अल्यौम भी और गदन भी, औ गदन अल्यौमा, या गदन अल्यौम, पहले गद को लाया और फिर अल्यौम को लाया, फइन्नहु युअख़ज़ु बिअव्वलिल वक़्तैन अल्लज़ी तफव्वह बिही, तो इसको लिया जाएगा भी अव्वलिल वक्तैन, उन दो वक्तों में से जो पहला है, अल्लज़ी तफव्वह बिही, जिस पर उसने तकल्लुम किया है, इन दो वक्तों में से जो पहला वक्त जिस पर इसने तकल्लुम किया है उसको लिया जाएगा। अगर पहले अल्यौम को जिक्र किया है तो तलाक उसी वक्त हो गई, और अगर पहले गदन को जिक्र किया है तो तलाक मुअल्लक हो गई अगले दिन के आने तक। तो कहते हैं फयकाउ फिल अव्वली फिल यौमी व फिस सानी फिल गदी, तो पहली सूरत के अंदर उसी दिन में तलाक वाके हो जाएगी, व फिस सानी फिल गदी, और दूसरी सूरत के अंदर गद यानी आने वाले कल में तलाक वाके होगी। लियन्नहु लम्मा काल अल्यौम, इसलिए क्योंकि जब उस शख्स ने अल्यौम कहा यानी पहला लफ्ज जिक्र किया, कान तंजीजन, तो पता चल गया कि यह क्या है, तंजीज है यानी तलाक को फौरी वाके कर रहा है। वल मुनज्जज ला यहतमिल इजाफता, और एक तलाक जब वो मुनज्जज हो जाए तो वो इजाफत का इहतमाल नहीं रखती। मुनज्जज कर दिया आपने तो इजाफत कैसे कर रहे हो भाई, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या मुनज्जज या इजाफत। पहले लफ्ज से ये क्या हो गई, मुनज्जज हो गई, तलाक तो एक ही थी वो मुनज्जज हो गई, तो आप इजाफत कैसे करोगे इसकी, तवज्जो है। तो अगर दूसरी तलाक होती आप उसकी कल की तरफ इजाफत करते, लेकिन एक ही तलाक थी, या उसने मुनज्जस होना था या उसने अगले दिन के साथ मुअल्लक होना था। जब आपने मुनज्जस कर दिया अब वो अगले दिन के साथ मुअल्लक नहीं होगी। तो कहते हैं वल मुनज्जज ला यहतमिल इजाफता, और फौरी वाके होने वाली तलाक जो है वो इजाफत का इहतमाल नहीं रखती। वलौ काल गदन, और अगर खावंद ने गदन जो है ये कहा है यानी पहले ये लफ्ज जिक्र किया है, कान इजाफतन, तो ये इजाफत है। वल मुजाफ ला यतनज्जज, और जो मुजाफ हो जो तलाक किसी वक्त की तरफ, ला यतनज्जज, वो तो फौरी वाके नहीं होती। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन गदन, तुझे कल तलाक है, अब यह तलाक कल ही वाके होगी, यह आज नहीं हो सकती, क्योंकि यह तलाक क्या हो चुकी, मुजाफ हो चुकी है, तो मुजाफ तलाक मुनज्जज नहीं हो सकती। यह माना है वल मुजाफ ला यतनज्जज, और मुजाफ तलाक जो है वो मुनज्जज नहीं हो सकती। लिमाफी ही मिन इबताल इजाफती, इस वजह से कि इसके अंदर इजाफत को बातिल करना है। फलगल लफ्जुस्सानी फिल फसलैनी, तो लग्व हो जाएगा दूसरा लफ्ज दोनों फसलों में, दोनों सूरतों में दूसरा जर्फ जो है वो लग्व हो जाएगा। वलौ काल अंति तालिकुन फी गदिन, अब दूसरी सूरत आ गई, खावंद ने फी का लफ्ज भी साथ जिक्र कर दिया, अंति तालिकुन फी गदिन, तो याद रखो, याद रखो, यहां इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं फी को जिक्र किया जाए या न किया जाए दोनों का एक ही माना है, अंति तालिकुन गदन और अंति तालिकुन फी गदिन, दोनों का एक ही माना है, ये दोनों इस्तेआब का तकाजा करते हैं। अंति तालिकुन फी गदिन, तू तलाक वाली है यानी तू तलाक के साथ मौसूफ है, फी गदिन आने वाले कल में, तू तलाक के साथ मौसूफ है आने वाले कल में, ये तकाजा करता है सुबह से शाम तक ये तलाक के साथ मौसूफ। जैसे अंति तालिकुन गदन, तू तलाक वाली है कल, ये भी क्या तकाजा करता है सुबह से शाम तक ये तलाक के साथ मौसूफ, और ये तभी हो सकता है जब अव्वल जुज के अंदर तलाक हो जाए। जब अव्वल जुज में तलाक हो जाएगी तो उस गद के सारे अज्जा में यह औरत तलाक वाली है, और सामन ने भी यही कहा था, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, दोनों में फर्क है। अगर गदन बगैर फी के हो तो यह इस्तेआब का तकाजा करता है, इस्तेआब का माना घेर लेना, क्या माना, घेर लेना। अंति तालिकुन गदन फी नहीं है, ये मंसूब है, मज़र्फ है, ये तकाजा कर रहा है कि कल के सारे अज्जा में औरत को अंति तालिकुन यानी तलाक वाली होना चाहिए। ये गदन जब बगैर फी के है, ये किसका तकाजा कर रहा है कि वो औरत तलाक के साथ मौसूफ हो कल के सारे दिन में, और उसकी यही सूरत है कि उसको अव्वल फजर में ही फौरन तलाक हो जाए, अब वो सारे दिन में तलाक के साथ मौसूफ रहेगी। लेकिन अगर फी का लफ्ज जिक्र कर दें अंति तालिकुन फी गदिन, तो जब फी आ गया अब ये गद इस्तेआब का तकाजा नहीं करता, तू तलाक वाली है फी गदिन कल के दिन में, तो कल के दिन के किसी एक जुज में भी औरत तलाक वाली हुई तो बात पूरी हो गई। उसने भी क्या कहा था, कल के दिन में तू तलाक वाली है, ये नहीं कहा कि कल के सारा दिन में तू तलाक वाली है, बल्कि कल के दिन में तू तलाक वाली है, तो कल के दिन में किसी एक जुज में भी अगर तलाक पाई गई तो बात पूरी हो गई भाई। लिहाजा इसमें खावन से पूछा गया आपने क्या नीयत की है, खावन ने कहा मैंने आखिरी जुज की नीयत की थी, तो इमाम साहब फरमाते हैं कजाअन भी इसकी तस्दीक की जाएगी, دیانتن میں تو اتفاق ہے, صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہتا ہے میری آخری جز کی نیت تھی تو اس کی تصدیق کر دیں گے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم سے جو مسئلہ پوچھا ہم نے بتا دیا. لیکن قضاءً جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, صاحبین فرماتے ہیں, کیونکہ غدن اور فی غدین دونوں کا ایک ہی معنی ہے, دونوں استعاب کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, جب فی کو ذکر کر دیا جائے تو یہ استعاب کا تقاضا نہیں کرتا, لہذا قضاءً اگر یہ کہتا ہے میری نیت آخری جز کی تھی تو قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ دن کے بالکل آخری لمحے میں طلاق ہوگی, اس سے پہلے سارا دن طلاق نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولو قال انت طالق فی غدن, اور اگر خاوند نے کہا کہ تو طلاق والی ہے فی غدن کل کے دن میں, وقال اور خاوند کہتا ہے نوی تو آخرا نہاری کہ میں نے دن کے آخر کی نیت کی تھی, دینا فی القضاء عند ابی حنیفہ رحم اللہ, تو اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک. وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لا یدین فی القضاء خاصتا, کہ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء کے اندر خاص طور پر, قضاء کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, دیانتن تو وہ بھی کہتے ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں قضاءً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. اب صاحبین کی دلیل آ گئی, کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ, اس لیے کیونکہ خاوند نے اس عورت کو موصوف کیا ہے طلاق کے ساتھ, فی جمیع الغدی سارے غد میں, یعنی سارے کل میں, چاہے انت طالق غدن کہیں یا انت طالق فی غدن, دونوں برابر ہیں, یہ دونوں استعاب کا تقاضا کرتے ہیں کہ سارے دن میں اس کو طلاق والی ہونا چاہیے, اور سارے دن میں طلاق والی وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اول جز میں طلاق واقع ہو جائے بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ, اس لیے کیونکہ خاوند نے اس عورت کو موصوف کیا ہے طلاق کے ساتھ, فی جمیع الغدی سارے کل میں, فصار بمنزلت قوله غدن, تو یہ خاوند کے قول غدن کے درجے میں ہی ہو گیا, علامہ بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ سارے غد کے اندر عورت تبھی موصوف ہو سکتی ہے جب اول جز کے اندر طلاق واقع ہو جائے بھائی. وَلِهَذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ, اور اسی لیے طلاق جو ہے اس غد کے اول جز میں واقع ہو جائے گی, عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ, جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو. وَهَذَا لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَإِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ, اور یہ اس لیے کیونکہ فی کو حذف کرنا و اثباتہ اور فی کو ثابت کرنا سواءٌ, یہ دونوں برابر ہیں, فی کو چاہے ذکر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں. لِأَنَّهُ ظَرْفٌ فِي الْحَالَيْنِ, اس لیے کیونکہ غد جو ہے وہ ظرف ہے دونوں حالتوں میں, چاہے فی کو ذکر کریں یا ذکر نہ کریں, یہ غد کا لفظ یعنی کل کا جو لفظ ہے وہ ظرف ہی ہے بھائی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوا حقیقت کلامی ہی, کہ اس شخص نے اپنے حقیقت کلام کی نیت کی ہے. امام صاحب کا ضابطہ میں نے ذکر کر دیا کہ جب فی ذکر ہو تو یہ استعاب کا تقاضا نہیں کرتا, یہ اسی طرح ہے, ایک شخص کہتا ہے واللہ لأصومن فی السنتی, واللہ لأصومن فی السنتی, واللہ میں ضرور روزہ رکھوں گا, فی السنتی اس سال میں, تو اس سال کے اندر سارا سال روزہ رکھنا ضروری نہیں, سال کے اندر ایک بھی دن وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کی قسم پوری ہو گئی. لیکن اگر وہ کہتا ہے واللہ لأصومن السنتا, کہ واللہ میں اس سال روزہ رکھوں گا, تو السنتا یہ منصوب لایا ہے, یہاں فی نہیں ہے, لہذا پورا سال اس کو روزہ رکھنا پڑے گا سوائے ان ایام کے جن ایام میں روزہ رکھنا شرعاً منع ہے, یعنی دونوں عید کے دن اور بڑی عید سے اگلے تین دن بھائی, تو یہ پانچ دن ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے بھائی, باقی پورا سال اس کو روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اس نے اسانتا بغیر فی کے ذکر کیا ہے. اور اگر فی کے ساتھ کہتا واللہ لأصومن فی السنتی, میں ضرور روزہ رکھوں گا فی السنتی اس سال میں, تو لہذا سال میں ایک بھی روزہ رکھ دے گا, تو اس نے سال میں اس نے روزہ رکھ لیا بھائی, فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. तो इमाम साहब फरमाते हैं जब फी को जिक्र किया जाए तो यह इस्तेआब का तकाजा नहीं करता, अब पूरा साल रोजा रखना जरूरी नहीं, और अगर फी को जिक्र नहीं करेगा यह इस्तेआब का तकाजा करता है कि रोजे घेर लें पूरे साल को, सारा साल वो रोजे रखे। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु नवा हकीकत कलाम ही, कि इस शख्स ने अपने कलाम की हकीकत का इरादा किया है, लिअन्न कलिमत फी लिज़र्फ़, इसलिए क्योंकि कलिमा फी ज़र्फ के लिए है, व ज़र्फ़ियतुल्ला तक्तज़ी लिस्तिआबा, और ज़र्फ होना यह इस्तिआब का तकाजा नहीं करता कि वह सारे वक्त को घेर ले, व तअय्यन अलजुज़ुल अव्वल ज़रूरत अदमिल मुज़ाहिमी। साहिबैन ने जिक्र किया था, इधर देखिए, साहिबैन ने कहा था अंतितालिकुन गदन कहे या अंतितालिकुन फी गदिन कहे, दोनों सूरतों में अगर खामन ने कोई नियत नहीं की तो अव्वले जुज में तलाक वाके हो जाएगी। किस में? अव्वले जुज में। मालूम हुआ दोनों कलाम बराबर हैं, दोनों कलाम, दोनों में अव्वले जुज में तलाक वाके हो रही है। गदन, गदन के अंदर तो इमाम साहब भी मानते हैं कि अव्वले जुज में वाके हो जाएगी। भाई गदन के अंदर तो पीछे जिक्र हो गया कि अगर खामन ने कोई नियत नहीं की तो अव्वले जुज में तलाक वाके हो जाएगी। साहिबैन फरमाते हैं अगर फी गदिन कहा, इसके अंदर भी अगर खामन ने कोई नियत नहीं की तो इमाम साहब के नजदीक भी पहले जुज में तलाक वाके हो जाएगी। मालूम हुआ गदन और फी गदिन में कोई फर्क नहीं है। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं, कहते हैं भाई अंती तालिकुन फी गदिन, अंतितालिकुन फी गदिन, यहां पर अव्वल जुज में तलाक इसलिए वाकई नहीं हुई कि यह इस्तेआब का तकाजा कर रहा था। साहिबैन तो फरमाते हैं यह चाहे गदन कहें चाहे फी गदिन कहें, यह किसका तकाजा करता है? इस्तेआब का, कि सारे दिन के अंदर तलाक होनी चाहिए। इमाम साहब फरमाते हैं कि फी गदिन के अंदर भी पहले जुज में तलाक होगी, लेकिन इसलिए नहीं कि यह फी गदिन इस्तेआब का तकाजा कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वहां और कोई मुकाबिल है ही नहीं। इस तलाक ने कल के किसी भी जुज में वाके होना है, इस तलाक ने कल के किसी भी जुज में वाके होना है, लेकिन जैसे ही अव्वल जुज आया बाकी जुज अभी आए ही नहीं, तो इस अव्वल का मुकाबिल कोई भी नहीं। जब कोई मुकाबिल नहीं है तो उसी में तलाक वाके हो जाएगी। तो ये जो तलाक वाके हुई है वो इस्तेआब की तकाजे की वजह से नहीं वाके हुई, बल्कि आदम मुकाबिल की वजह से वाके हुई है, आदम मुजाहिम की वजह से वाके हुई है, क्योंकि अभी और कोई जुज आया ही नहीं, एक ही जुज है, इसके मुकाबले में कोई और जुज नहीं जो तकाजा कर रहा हो कि तलाक मेरे अंदर वाके हो। पहला जुज जैसे ही आया इसने क्या तकाजा किया? तलाक मेरे अंदर वाके हो। दूसरा आता वो भी तकाजा करता, तीसरा, चौथा, जो जो जुज आता जा रहा है वो तकाजा करता। किसी भी जुज में तलाक वाके हो जाए ठीक है मसला, लेकिन जब अव्वल जुज आया बाकी जुज तो अभी आए ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं है, और ये अव्वल जुज तकाजा कर रहा है कि तलाक मेरे अंदर वाके हो जाए, तो अदम मुकाबिल होने की वजह से तलाक वाके हो गई। गई इस वजह से वाके नहीं हुई कि ये इस्तेआब का तकाजा कर रहा था। तवज्जो है। तो कहते हैं वतअय्यन अलजुज़ुल अव्वल ज़रूरत अदमिल मुज़ाहिमी, और पहला जुज ही मुतअय्यन हो गया ज़रूरत अदमिल मुज़ाहिमी, मुकाबिल न होने की जरूरत की वजह से कि कोई इसका मुकाबिल मौजूद नहीं था, तो जरूरत की वजह से तलाक उसी में ही वाके हो गई। फ़इज़ा अय्यना आखिरन नहारी, जब खामन ने खुद मुतय्यन कर दिया दिन का आखिरी हिस्सा, काना तायीनुल कस्ती यु औला बिल एतबारी, तो तायीन कस्ती वो ज्यादा लायक है कि उसका एतबार किया जाए, मीना जरूरी, ये जरूरी के मुकाबले में। भाई देखो खामन ने क्या कहा है, फी को जिक्र किया है, फी गदिन। इमाम साहब भी फरमाते हैं अगर खामन ने कोई नियत नहीं की तो फिर अव्वल जुज में तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि हर जुज तलाक का तकाजा करेगा कि मेरे अंदर वाके हो, और जब पहला जुज आया अभी तो बाकी आए ही नहीं, लिहाजा वहां कोई मुकाबिल नहीं, पहले जुज ने आते ही तकाजा किया और साथ ही उसमें तलाक भी वाके हो गई, आदम मुकाबिल की वजह से कि कोई मुकाबले में और जुज मौजूद ही नहीं। जबकि अगर यह शख्स नियत कर लेता है, यह शख्स क्या कर लेता है, आखिरी जुज की नियत कर लेता है, तो एक तरफ तायीन कस्दी है और एक तरफ तायीन जरूरी है, तायीन कस्ती यानी जो अपने इरादे से वो तायीन कर रहा है कि दिन के आखिरी जूज में होनी चाहिए तलाक, और तायीन जरूरी वो है वो जो जरूरत की वजह से साबित हुई है कि अव्वल जूज में भी तलाक हो जाती है जब कोई मुकाबिल ना हो। तो एक तरफ तायीन जरूरी है और एक तरफ क्या है, तायीन कस्दी। तो जब तायीन कस्दी मौजूद है तो फिर इसी का एतबार किया जाएगा, तायीन जरूरी का कोई एतबार नहीं, उसका एतबार तो हमने जरूरत की वजह से किया था कि वहां और कोई मुकाबिल मौजूद नहीं था। तवज्जो भी है कि नहीं, खावन ने कहा अंति तालिकुन फी गदिन, कोई नियत नहीं की, लिहाजा अगले दिन के पहले जुज में ही तलाक वाके हो जाएगी क्योंकि यहां कोई मुकाबिल नहीं है। तो ये जो पहले जुज में तलाक वाके हुई किस लिए, जरूरत की वजह से, क्योंकि अव्वल जूस क्या कर रहा था, तलाक का तकाजा कर रहा था। लेकिन अगर खावंद ने बाकायदा खुद नियत कर ली कि आखिरी जूस में हो मेरी नियत, तो क्या है, तो एक तरफ तायीन जरूरी है, जरूरत तकाजा कर रही है पहले जूस में होनी चाहिए, और एक तरफ तायीन कस्दी है वो इरादा कर रहा है आखिरी जूस में होनी चाहिए। तो तायीन कस्दी का एतबार करना पड़ेगा, तायीन जरूरी यहां उसका एतबार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमने जरूरत की वजह से उसका एतबार किया था। जब तायीन कस्दी आ गई अब तायीन जरूरी का कोई एतबार नहीं है। भाई ये माना है, कहते हैं वतायन अल जुज उल अव्वल जरूरत आदम अल मुजाहिमी, और पहला जुज मुतायन हो गया आदम मुजाहिम के जरूरी होने की वजह से कि वहां कोई मुकाबिल मौजूद नहीं था, तो इस जरूरत की वजह से। फ़इदा अय्यना आखिरा नहारी, तो जब खावन ने दिन के आखिर को मुतायन कर दिया, काना तायीनुल कस्दी यु औला बिल एतबारी, तो तायीन कस्दी जो है वो ज्यादा लायक है कि उसका एतबार किया जाए, मीना जरूरी ये जरूरी के मुकाबले में, तो तायीन कस्दी जो है वो ज्यादा लायक है कि उसका एतबार किया जाए तायीन जरूरी के मुकाबले में, क्योंकि वो तायीन जरूरी तो जरूरत की वजह से है। जब तायीन कस्दी आ गई अब कोई जरूरत नहीं है कि पहले जूस में इसको वाकई किया जाए। बिखिलाफ कौली गदन, बखिलाफ खावन के कौल गदन के, जब उसने फी के बगैर गदन कहा था, लिया नहू यकतजिल इस्तियाबा, इसलिए क्योंकि इस्तियाब का तकाजा करता है, जब जर्फ को बगैर फी के साथ जिक्र किया जाए तो यह क्या तकाजा करता है कि इस्तियाब होना चाहिए। अंत तालिकुन गदन, यानी औरत तलाक वाली हो गदन, कल के हर हर जुज में जी। तो कहते हैं बिखिलाफ कौलिही गदन, बखिलाफ खावन के कौल गदन के, लिअन्नहु यक्तज़िल इस्तियाब, इसलिए क्योंकि ये जो गदन है बगैर फी के ये तकाजा करता है इस्तियाब का, कि ये तलाक वाली सिफत पूरे दिन के अंदर पाई जाए। हैसु वसफहा बिहादिहि सिफति मुजाफन इला जमीउल गदी, इस हैसियत से कि खावन ने इस औरत को मौसूफ किया है इस सिफत के साथ, मुजाफन इला जमीउल गदी, इस तौर पर कि यह सिफत मुजाफ हो रही है सारे गद की तरफ, आने वाले सारे दिन की तरफ। नजीरहू, इसकी नजीर जो है इदा काला, जब कोई शख्स कहता है वल्लाहि लअसूमन्न उमरी, वल्लाहि लअसूमन्न उमरी, वल्लाह मैं अपनी सारी उम्र रोजा रखूंगा, तो अब सारी उम्र उसको रोजा रखना पड़ेगा क्योंकि उसने फी लफ्ज जिक्र नहीं किया। फी लफ्ज तो उमरी, मेरी उमर, यह जर्फ है और इसके लिए उसने फी जिक्र नहीं किया, यह इस्तेआब का तकाजा करता है, इसको अब सारी उम्र रोजे रखने पड़ेंगे, एक भी रोजा छूटेगा यह हानिस हो जाएगा। और दूसरी सूरत है फी को जिक्र करता है वल्लाहि लअसूमन्ना फी उमरी, कि वल्लाह मैं अपनी उम्र में जरूर रोजा रखूंगा, अब उम्र भर में एक भी रोजा रखेगा तो कसम पूरी हो गई। तो कहते हैं व नजीरहू, इस गद की नजीर जो है इदा काल, जब कोई शख्स कहता है वल्लाहि लअसूमन्ना उमरी, कि वल्लाह मैं जरूर रोजा रखूंगा पूरी उम्र। वह नजीर उल अव्वली, और अव्वल की नजीर यानी फिल गद की जो नजीर है वल्लाहि लअसूमन नफी उमरी, कि वल्लाह मैं अपनी उम्र में जरूर रोजा रखूंगा। वाला हादा दहरु वफी दहरी, और इसी पर है अद दहरु और फी दहर भी। एक शख्स कहता है वल्लाहि लअसूमन न दहरा, या अल्लाह मैं सारा जमाना रोजे रखूंगा, दहर जमाने को कहते हैं, तो सारे जमाने में अब उसको रोजे रखने पड़ेंगे। और अगर फी जिक्र करता है वल्लाहि लअसूमन्ना फिद्दहरी, तो अब जमाने के अंदर एक भी वो रोजा रख लेगा तो उसकी कसम पूरी हो गई। अब सारे जमाने में रोजा रखना जरूरी नहीं, क्योंकि ये फी जब आ जाए तो फिर ये इस्तेआब का तकाजा नहीं करता। आगे देखिए, वलौ काल अंति तालिकुन अमसी वकद तज़व्वजहल यौम लम यक़ा शैउन। खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन अमसी, अमसी मैंने अभी बताया गुज़श्ता कल को कहते हैं, अंति तालिकुन अमसी, तुझे गुज़श्ता कल तलाक है और हाल यह है कि आज ही इनकी शादी हुई है, शादी आज हुई है और क्या कह रहा है अंति तालिकुन अमसी, तो ये गुज़श्ता कल में तलाक को वाके करना चाह रहा है और गुज़श्ता कल तो ये इसका खावंद ही नहीं था, लिहाजा उसका ये कलाम लग चला जाएगा, इससे तलाक वाके नहीं होगी। कहते हैं वलौ काल अंति तालिकुन अमसी, और अगर खामन ने बीवी से कहा कि तुझे गुज़श्ता कल तलाक है, वक़द तज़व्वजहल यौम, और हाल यह है कि खावन ने उसे आज के दिन में निकाह किया है, लम यक़ा शैउन, तो कोई चीज वाकई नहीं होगी, लिअन्नहु असनदहु इला हालतिन मअहूदतिन मुनाफियतिन लिमालिकियति तलाक, लिअन्नहु असनदहु, इसलिए क्योंकि खावंद ने निस्बत की है इस तलाक की, इला हालतिन माहूदतिन, माहूद का माना मुकर्रर और मुतायन यानी मालूम, लिअन्नहु असनदहु, इसलिए क्योंकि खावंद ने इस तलाक की निस्बत की है, इला हालतिन माहूदतिन, एक ऐसी मालूम हालत की तरफ, मुनाफियतिन लिमालिकियति तलाकी, जो तलाक के मालिक होने के मुनाफी थी, गुज़श्ता कल तो निकाह ही नहीं हुआ था, गुज़श्ता कल तो वो तलाक का खावंद मालिक ही नहीं था, तो खामन ने तलाक की निस्बत कर दी है ऐसे जमाने की तरफ जिस वक्त वो तलाक का मालिक ही नहीं था, तो लिहाजा उसकी ये तलाक लग्व चली जाएगी, तलाक नहीं होगी। हां अगर इसकी शादी पहले से हो चुकी थी, इसकी शादी पहले हो चुकी थी, शादी मसलन 10 साल पहले हुई थी और अब कहता है अंति तालिकुन अमसी, गुज़श्ता कल तुझे तलाक है और गुज़श्ता कल तो ये तलाक का मालिक था, लिहाजा तलाक हो जाएगी और फिलहाल हो जाएगी, क्योंकि माजी में तो कोई तलाक वाकई नहीं कर सकता, तो माजी में तो वाकई नहीं हो सकती, लिहाजा इसी वक्त वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु असनदहु इला हालतिन माहूदतिन मुनाफियतिन लिमालिकियति तलाकी, इसलिए क्योंकि खावन ने तलाक की निस्बत की है एक ऐसी हालत की तरफ जो मालूम है और तलाक के मालिक होने के मुनाफी है, फयल गू, लिहाजा उसकी ये तलाक लग्व हो जाएगी, कमा इदा काला, ये ऐसे ही है जैसे कि खावंद ने कहा हो अंति तालिकुन कबल अन उखलका, अंति तालिकुन तुझे तलाक है कबल अन उखलका, कबल इसके कि मैं पैदा किया गया, यानी मेरी पैदाइश से भी पहले तुझे तलाक है। अब भाई पैदाइश से पहले तो तुम तलाक के मालिक ही नहीं थे, लिहाजा ये कलाम भी लग्व चला जाएगा। तो कहते हैं कमा इदा काला, जैसे कि खावन ने कहा हो अंति तालिकुन कबल अन उखलका, कि तुम्हें तलाक है मेरी पैदाइश से पहले, वली अन्नहु युम्किनु तस्हीहुहु इखबारन अन अदमिन निकाह औ अन कौनिहा मुतल्लकतन बितत्लीक गैरिही मिनल अज़वाज। भाई इस जगह को समझ लें, याद रखो ये जो तलाक है ना ये इंशा है, तलाक क्या है इंशा, एक चीज को वजूद दे रहा है खावन जिसका वजूद पहले नहीं था, एक शख्स ने और एक औरत से निकाह किया हुआ है, ये उसकी बीवी है, कोई तलाक नहीं, लेकिन खामन जैसे ही कहेगा अंति तालिकुन तो फौरन तलाक हो गई, तलाक का वजूद आ गया, इससे पहले तलाक का वजूद नहीं था। या इसी तरह है जैसे मुश्तरी और बाय के दरमियान ईजाब और कबूल होता है, बाय ने कहा मैंने ये किताब आपको 1000 रुपए में बेच दी और मुश्तरी कहता है मुझे मंजूर है, जैसे ही ये इजाब और कबूल करेंगे साथ ही बै पाई गई, इससे पहले बै का वजूद नहीं था, और जैसे ही बै पाई गई मुश्तरी मबीए का मालिक बन गया, तो इसको कहते हैं इंशा, एक चीज को वजूद दिया जाता है जिसका पहले वजूद नहीं था। और याद रखो इस इंशा ए बै के लिए या इंशा ए निकाह के लिए या इसी तरह इंशाए तलाक के लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज मुकर्रर नहीं, अरबी जुबान में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसको वजा ही इंशाए निकाह के लिए किया गया हो या इंशाए तलाक के लिए किया गया हो या इंशाए बै के लिए, हालांकि इंसान को निकाह की भी हाजत है, तलाक की भी हाजत है, बै वगैरह और अकदों की भी हाजत है, तो जब इन आकदों की इंशा के लिए कोई लफ्ज है ही नहीं अरबी जुबान में, तो फिर खबर वाले अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कौन से? खबर वाले। अंतितालिकुन, ये तो असल में खबर है। मैं कहता हूं अंतजारिबुन कि आप पिटाई कर रहे हैं, तो मेरे कहने से तो आप पिटाई नहीं कर रहे, मैंने तो सिर्फ एक खबर दी है। अंतजारिबुन कि आप पिटाई कर रहे हैं, तवज्जो है। तो अंतितालिकुन इसमें तो सिर्फ एक खबर दी जा रही है, तू तलाक वाली है, लेकिन चूंकि इंशाए तलाक के लिए कोई लफ्ज था ही नहीं, लिहाजा इस अंतितालिकुन को शरीयत ने इंशाए तलाक के कायम मकाम कर दिया। इंसान तलाक देना चाहता है बीवी को, तलाक देने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है अरबी में, तो वही खबर वाला लफ्ज, अंतितालिकुन वाला लफ्ज किसके लिए मुतय्यन कर दिया? इंशाए तलाक के लिए भी मुतय्यन कर दिया। इसी तरह इंशाए निकाह और इंशाए बैअ, उनके लिए भी अरबी जुबान में कोई लफ्ज नहीं है, तो वहां भी खबर वाले लफ्जों से ही काम चलाया जाता है। वो खबर वाले लफ्जों को ही शरीयत ने इंशा के कायम मकाम कर दिया। खावन बीवी से कहता है मैंने तुझसे निकाह कर लिया, और बीवी कहती है मैंने कबूल किया। देखो ये खबर है, मैंने निकाह कर लिया, ये तो एक बात बतला रहा है, खबर दे रहा है, लेकिन इसी को शरीयत ने किसका दर्जा दे दिया? इंशा वाला। तवज्जो है। लिहाजा अंतितालिकुन ये असल में क्या है? खबर। हकीकतन ये कलाम कैसा है? खबर वाला है, लेकिन शरीयत ने इसको किसका दर्जा दे दिया? इंशा वाला दर्जा दे दिया। लिहाजा खावन ने बीवी से कहा अंतितालिकुन अमसी, तुझे गुज़श्ता कल तलाक है, और गुज़श्ता कल तो इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी तो शादी ही आज हुई है, तो इसको इंशा पर महमूल नहीं कर सकते, क्योंकि गुज़श्ता कल यह तलाक का मालिक ही नहीं था। जब इंशा पर महमूल नहीं कर सकते तो फिर ये कलाम लग हो गया। हां खबर पर महमूल कर सकते हैं, लिहाजा इसको खबर पर महमूल कर लेंगे। ये तो कलाम असल में है ही खबर के लिए, तो और खबर पर यहां महमूल करना मुमकिन भी है। किस तरह? वो खावन यू कह रहा है अंतितालिकुन अमसी, तालिकुन से मुराद है उसकी आदम निकाह, क्योंकि जब तलाक आती है तो निकाह टूट जाता है, तो तालिकुन बोलकर वो किसका इरादा गोया करना चाह रहा है? आदम निकाह का। खावन ने कहा क्या? अंतितालिकुन अमसी, लेकिन उसका इरादा मतलब कहने का यह है कि कल तू गैर निकाह वाली थी, कल तू तलाक वाली थी, यानी तू गैर निकाह वाली थी, हमारा निकाह तो आज हुआ है, देखो कल का दिन था, तू बगैर निकाह के थी, और आज हम पर अल्लाह ने फजल किया, देखो हमारा निकाह भी हो गया। तो यह खबर दे रहा है गोया, अंतितालिकुन अमसिक में वो क्या खबर दे रहा है कि गुज़श्ता कल तू आदम निकाह वाली थी, तवज्जो है। या निकाह तो इनका आज हुआ है, कल तो खावन तलाक का मालिक ही नहीं था, तो इसको हम खबर पर महमूल कर सकते हैं कि हो सकता है इस औरत ने पहले कहीं और निकाह किया था और उस दूसरे खावन ने इसको तलाक दी हुई थी, उसका तो आज निकाह हुआ है इस खावन के साथ। तो खावन कहते हैं अंतितालिकुन अमसी, देखो कल तू तलाक वाली थी और आज तू निकाह वाली है, आज क्या है? निकाह वाली है। तो देखो अंतितालिकुन अमसी को हम खबर पर महमूल कर सकते हैं, अंतितालिकुन को तो इंशा पर महमूल नहीं कर सकते, गुज़श्ता कल तलाक तो वाकई नहीं हो सकती क्योंकि गुज़श्ता कल खावन तलाक का मालिक ही नहीं था। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, देखो अंतितालिकुन ये असल में है खबर, असल में क्या है? खबर, लेकिन शरीयत ने इसको इंशा के कायम मकाम कर दिया है। लेकिन यहां पर आज इनकी शादी हुई है और खावन बीवी को कहता है अंतितालिकुन अमसी, गुज़श्ता कल तुझे तलाक है, भाई गुज़श्ता कल तो आप तलाक के मालिक ही नहीं थे, आपका निकाह ही नहीं था, लिहाजा इसका कलाम लग्व चला गया, तलाक नहीं होगी। हां इसको हम खबर पर महमूल कर लेंगे, और खबर पर महमूल करना मुमकिन भी है कि तलाक से क्या मुराद ले लो, आदम निकाह, अंतितालिकुन अमसी के मतलब तू कल गैर निकाह वाली थी, तलाक से क्या मुराद ले लो, गैर निकाह, देखो ना तलाक से निकाह टूट जाता है, तो लफ्ज वो तलाक वाला बोल रहा है लेकिन उसका इरादा क्या है, मतलब क्या है कि कल तू गैर निकाह वाली थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों निकाह वाले हैं, या बीवी को किसी और ने तलाक दी हुई थी, तो खावंद के कहने का मतलब यह है कल देखो तू तलाक वाली थी, आज तू निकाह वाली है, तो इसको खबर पर महमूल करना मुमकिन है। इंशाए तलाक तो हो नहीं सकता और खबर पर महमूल करना मुमकिन है, तो खबर पर ही महमूल करेंगे हम इसको। یہ معنی ہے وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ اِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ، اور اس لیے کیونکہ اس کلام کی درستگی ممکن ہے کہ اس کو درست قرار دیا جائے، اِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ، اس کو عدم نکاح سے خبر بناتے ہوئے، او عن کونها مطلقتن، یا اس کو خبر بناتے ہوئے مطلقہ ہونے سے، بتطلیق غیره من الازواج، اس خاوند کے علاوہ کسی اور خاوند کے طلاق دینے سے، اس خاوند کے علاوہ کسی اور خاوند کے طلاق دینے کے ساتھ اس کے متعلقہ ہونے کی خبر پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر ترجمہ دیکھ لیں. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ، اس لیے کیونکہ اس کلام کو درست قرار دینا ممکن ہے، اخبار عن عدم النکاح، بطور خبر کے عدم نکاح سے، عدم نکاح سے بطور خبر کے بھی اس کو صحیح قرار دینا ممکن ہے. اسی طرح عن کونہا مطلقتن، اس کو اس عورت کے مطلقہ ہونے سے خبر بنانے سے بھی اس کی تصحیح ممکن ہے، بتطلیق غیرہ من الازواج، بوجہ اس عورت کو طلاق دینے اس خاوند کے علاوہ اور خاوند کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو تزوجہا اول من امس وقع الساعت، ہاں میں نے بتایا اگر اس خاوند کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے اس عورت سے اور اب کہتا ہے انت طالق امسی، گزشتہ کل تجھے طلاق ہے، تو پھر اس صورت میں اس وقت طلاق ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ انت طالق، یہ کس کے قائم مقام ہے؟ انشاء کے، اسے طلاق ہوتی ہے، اور یہ طلاق کب واقع کرنا چاہتا ہے؟ امسی، گزشتہ کل، ماضی میں. اور طلاق فی الحال تو واقع کی جا سکتی ہے، ماضی میں تو کوئی واقع نہیں کر سکتا، وہ تو گزر چکا ہے، لہذا فی الحال ہی واقع ہو جائے گی. بھائی تو کہتے ہیں ولو تزوجہا، اور اگر اس خاوند نے اسے شادی کی تھی، اول من امسی، کل سے پہلے، گزشتہ کل سے پہلے، وقع الساعت، تو اسی گھڑی جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی. لئنہ ما اسندہ الی حالت منافیت، اس لیے کیونکہ خاوند نے اس طلاق کی نسبت کسی منافی حالت کی طرف نہیں کی، گزشتہ کل بھی وہ طلاق کا مالک تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ طلاق کا مالک نہ ہو، ایسا نہیں تھا. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَا أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، اس لیے کیونکہ خاوند نے اس طلاق کی نسبت کسی منافی حالت کی طرف نہیں کی. وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إِخْبَارًا أَيْضًا، اور نیز بطور خبر کی بھی اس کی تصحیح ممکن نہیں ہے. بطور خبر کی بھی اس کی تصحیح ممکن نہیں. پہلے ہم نے کیا خبر بنائی تھی؟ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِي، کہ تو غیر نکاح والی تھی گزشتہ کل. طالق ان کو کس معنی میں لیا تھا؟ عدم نکاح کے معنی میں، کہ انت طالق امسی، گزشتہ کل تو غیر نکاح والی تھی. لیکن یہاں تو اس پر بھی محمول نہیں کر سکتے، بھائی اس آدمی سے تو اس کے عورت کا بہت پہلے سے نکاح ہے، تو گزشتہ کل یہ غیر نکاح والی تھی یا نکاح والی تھی؟ گزشتہ کل بھی تو یہ نکاح والی تھی، لہذا اس کو خبر پر بھی ہم محمول نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے ولا یمکن تصحیحہ اخبارا عنہ، اور نیز اس کو اس خبر بناتے ہوئے بھی اس کی تصحیح ممکن نہیں ہے. فکان انشاء ان، تو پھر یہ جو انت طالق امسی ہے یہ انشاء ہوگا. ول انشاء فی الماضی انشاء ان فی الحالی، اور ماضی کے اندر انشاء جو ہے یہ زمانہ حال میں انشاء ہے، کیونکہ ماضی میں انشاء نہیں ہو سکتا. فیقع الساعت، تو اسی گھڑی طلاق واقع ہو جائے گی. آگے دیکھیے ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجک لم یقع شیء. صورت مسئلہ یہ، خاوند نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے، میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے کے زمانے میں تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت کی ہے اس زمانے کی طرف جس زمانے کے اندر یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا. اپنے نکاح سے پہلے طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے، اپنے نکاح سے پہلے تو یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا. ولو قالا، اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا انت طالق قبل ان اتزوجکی، کہ تجھے طلاق ہے قبل اس کے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لم یقع شیء، ان تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی. لئنہ اسندہ الی حالت منافیت، اس لیے کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت کی ہے کہ ایسی حالت کی طرف جو طلاق کے منافی ہے، وہ طلاق کا اس وقت مالک ہی نہیں تھا. فصار کما اذا قال، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یوں کہا ہو طلقتک و انا صبی او نائم، ये इसी तरह है जैसे खामन ने यूं कहा हो तलक तु की व अनासबीयन, कि मैंने तुझे तलाक दी व अनासबीयन इस हाल में कि मैं बच्चा हूं। यानी यूं करो बा मुहावरा तर्जमा यूं करो तलक तु की व अनासबीयन कि मैंने तुम्हें तलाक दी बच्चा होने की हालत में, बच्चा होने की हालत में। लिहाजा बच्चा होने की हालत में तो आप तलाक के मालिक ही नहीं थे जब आप बच्चे थे भाई, जब खावंद बच्चा था तो उस तो तलाक का मालिक ही नहीं था, लिहाजा इस सूरत में भी यह कलाम लग्व चला जाएगा, तलाक नहीं होगी। या खावंद कहता है तलक तो कि वह आना ना इमुन, मैंने तुझे सोते हुए तलाक दी, मैंने तुझे सोते हुए तलाक दी। भाई सोते हुए तो तलाक वाकई नहीं होती भाई, लिहाजा तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं फसार कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे खामन ने कहा हो तलक तु की व अना सबीयुन के मैंने तुझे तलाक दी बच्चा होते हुए, औ ना इमुन या सोए हुए, औ यसिहु इखबारन अला मा जकरना, औ यसिहु इखबारन या उसका ये कलाम सही है इखबारन बेतबार खबर होने के, अला मा जकरना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया। खामन क्या कह रहा है अंति तालिकुन कबला अन अतजवजा की, तू तलाक वाली है कबल उसके कि जब मैंने तुझसे निकाह किया। तो यहां खब गोया वो खबर देना चाह रहा है, तलाक बोलकर अदम निकाह मुराद है कि मैंने तुझसे निकाह नहीं किया था तो उससे पहले तू अदम निकाह वाली थी, तो इसको खबर पर महमूल करना भी सही है, लिहाजा इसको खबर पर महमूल करेंगे। औ यसिहु इखबारन अला मा जकरना, यह इसलिए क्योंकि यह कलाम सही हो सकता है बतौर इखबार के, अला मा जकरना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि तलाक बोलकर क्या मुराद है आदम निकाह मुराद है। वलौ काल अंत तालिकुम मालम उतल्लिक की औ मता लम उतल्लिक की औ मता मालम उतल्लिक की वसकत तुल्लिकत। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, अंति तालिकुन तुझे तलाक है मालम उतल्लिक की जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं। और यह कहने के बाद खावन खामोश हुआ, जैसे ही खामोश हुआ तलाक हो गई, क्योंकि जैसे ही खामोश हुआ कुछ वक्त पाया गया और उसने क्या कहा था जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, तो वक्त पाया गया या नहीं जिसमें तलाक दे सकता था, लेकिन उसने तलाक नहीं दी, लिहाजा फौरन तलाक वाकई हो जाएगी। अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, यानी जब भी ऐसा वक्त पाया जाए जब मैं तुझे तलाक न दूं तो तुझे तलाक हो जाए। तो जैसे ही यह खामोश हुआ यह वक्त पाया गया जिसमें यह तलाक दे सकता था लेकिन इसने दी नहीं, तो खुद ब खुद वाकई हो जाएगी। तवज्जो है, तो यहां पर तीन लफ्ज बताएंगे, मा इस्तेमाल करें अंति तालिकुन मा लम उतल्लिक की, या मता इस्तेमाल करें अंति तालिकुन मता लम उतल्लिक की, या मता मा इस्तेमाल करें अंति तालिकुन मता मा लम उतल्लिक की। तवज्जो है, मा मता और मता मा तीनों का एक ही माना है। अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की क्या माना, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दू। मता ले आओ, अंति तालिकुन मता लम उतल्लिक की, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दू। और मता मा भी इसी तरह है, अंति तालिकुन मता मा लम उतल्लिक की, कि तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दू। तो तीनों का एक ही हुक्म है, क्योंकि मा मता और मता मा तीनों वक्त के लिए आते हैं भाई। तो जब भी ऐसा वक्त पाया जाएगा तलाक हो जाएगी, और जैसे ही वो खामोश हुआ ऐसा वक्त पाया गया लिहाजा फौरन तलाक हो गई। तो कहते हैं वलौ काल अंति तालिकुम मा लम उतल्लिक की, ये एक लफ्ज, औ मता लम उतल्लिक की दूसरा लफ्ज, औ मता मा लम उतल्लिक की ये तीसरा लफ्ज आया। तो वसा कता ये लफ्ज, खावन ने इनमें से कोई कहा वसा कता और खामोश हुआ तुल्लिकत, तो औरत को फौरन तलाक हो जाएगी। लिअन्नहु अज़ाफ़त तलाक इला ज़मानिन खालिन अनि तत्लीकी, इसलिए क्योंकि खामन ने तलाक की निस्बत की है ऐसे जमाने की तरफ, खालिन अनि तत्लीकी जो तलाक देने से खाली हो। वकद वो जिदा है सुसकता, और ऐसा वक्त पाया गया है सुसकता जब यह खामोश हुआ, जैसे ही यह खामोश हुआ ऐसा वक्त पाया गया। तो तलाक हो गई। वहाजा, और ये इसलिए है, लिअन्न कलिमता मता व मता मा सरीहुन फिल वक्ति, इसलिए क्योंकि कलिमा मता और इसी तरह मता मा ये दोनों सरीह हैं फिल वक्ति, वक्त में, यानी ये वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिअन्नहुमा मिन ज़ुरूफ़ ज़मानी, इसलिए क्योंकि ये दोनों ज़र्फ़े ज़मान में से हैं। वकदा कलिमतु मा लिल वक्ति, और इसी तरह कलिमा मा जो है वो भी वक्त के लिए आता है। قال الله تعالى, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मा दुम तो हैया, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जिस वक्त तक जिंदा हूं। तो यह मा किस लिए है, यहां वक्त के माना में है। तो कहते हैं कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मा दुम तो हैया ऐ वक्त अल हयाती, यानी मेरी पूरी जिंदगी। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनको लेकर आई उनकी पैदाइश के बाद लोगों के दरमियान, तो उन्होंने बचपन में जो कलाम किया तो वो फरमाते हैं, व औसानी बिस्सलाती व ज़कती मा दुम तो हैया। तो यहां ये मां किस लिए आया है, वक्त के लिए आया है। वलव काला अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की लम तो तल्लक हत्ता या मोता। दूसरी सूरत, अब पहले मां मता और मता मा का बयान गुजर गया और ये सब वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इन यानी शर्त को जिक्र करेंगे। खावन बीवी से कहता है, अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की, तुझे तलाक है अगर मैं तुझे तलाक न दूं, तुझे तलाक है अगर मैं तुझे तलाक ना दूं, तो ये तलाक कब वाके होगी। कहते हैं ये आखिरी लम्हे में जिंदगी के, जब वो खावंद मरने लगा और अब इतना वक्त भी नहीं है कि जिसके अंदर वो अंति तालिकुन कह सके, जिसमें वो अंति तालिकुन कह सके, तो अब तलाक हो जाएगी। तवज्जो है, खावंद ने क्या कहा था, अंति तालिकुन इन लम उतल्लिक की, तुझे तलाक है अगर मैं तुझे तलाक ना दूं। तो जिंदगी के हर हर लम्हे में एहतमाल है, हो सकता है अभी दे दे, हो सकता है अभी तलाक दे दे, हो सकता है अभी तलाक दे दे, लिहाजा तलाक वाकई नहीं हो रही। ये किसी भी वक्त शर्त को पूरा कर सकता है, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, अब तो ये तलाक नहीं दे सकता। और इसने भी क्या कहा था, अगर मैं तुझे तलाक ना दूं तो तुझे तलाक है। तो अब आखिरी उस लम्हे में जब वो अंति तालिकुन कहने से भी आजिज आ गया, तो उस वक्त अब तलाक वाकई हो जाएगी। और याद रखो, अगर औरत मर गई तब भी यही हुक्म है, यानी अगर औरत मरने लगी और अब औरत की जिंदगी आखिरी लम्हे चंद रह गए, अब इतना वक्त भी नहीं है कि खावन अंति तालिकुन पूरा लफ्ज कह सके, तो वो आखिरी लम्हे के अंदर जो है औरत को तलाक हो जाएगी, क्योंकि खावन ने कहा था अगर मैंने तुझे तलाक ना दी तो तुझे तलाक है, तो अब तलाक हो जाएगी। तफसील समझ में आ गई। तो कहते हैं वलव काला, और अगर खामन ने कहा, अंत तालिकुन इल्लम उतल्लिक की, तुझे तलाक है अगर मैं तुझे तलाक न दूं, लम तो तल्लक हत्ता या मोता, तो औरत को तलाक नहीं होगी यहां तक कि खावंद मर जाए, यानी आयन मौत के वक्त। लिअन्नल अदम ला यतहक्ककु, इसलिए क्योंकि तलाक का न होना यह नहीं पाया जाएगा। इल्ला बिल यस अनिल हयाती, मगर जिस वक्त जिंदगी से मायूसी हो जाए, जब वो शख्स क्या हो जाए, जिंदगी से मायूस हो जाए, अब मालूम हुआ वो अंति तालिकुन भी नहीं कह सकता, तो अब उसने औरत को तलाक न दी है न दे सकता है, औरत को क्या हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्ना अल-अदम ला यतहक्ककु इल्ला बिल-यास अनिल हयाती, इसलिए क्योंकि इस तलाक का आदम जो है वो नहीं हो सकता मगर जिस वक्त जिंदगी से मायूसी हो जाए। वह हुआ शर्तु, और ये शर्त थी कि जब न दे सके तो फिर तलाक होगी। कमाफी कौल ही, जैसे कि खावन के इस कौल में है, इल्लम आतिल बसरता, खावन बीबी से कहता है, अंति तालिकुन इल्लम आतिल बसरता, तुझे तलाक है अगर मैं बसरा न आया, तो तमाम जिंदगी एहतमाल है, हो सकता है किसी भी वक्त बसरा चला जाए, तो लिहाजा तलाक नहीं होगी। हां, जब आखिरी जिंदगी के ऐसे लम्हात आ गए कि अब उसके बसरा जाने की कोई सूरत नहीं, तो फिर उस वक्त तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं कमाफी कौल ही, जैसे कि खावन के इस कौल में है, इल्लम आतिल बसरता, कि तुझे तलाक है अगर मैं बसरा ना आया। वह मौतुहा भी मंजिलती मौती ही, और बीवी की मौत भी खावन की मौत के दर्जे में है। हुआ सही, यही कौल सही है, बीवी भी अगर मरने लगी है और आखिरी लम्हे आ गए, अब इतना वक्त भी ना बचा जिसमें खावंद अंति तालिकुन कह सकता है, तो उस आखिरी लम्हे के अंदर औरत को तलाक हो जाएगी। आगे देखिए, वलौ काला अंति तालिकुन ईदा लम उतल्लिक की औ ईदा मालम उतल्लिक की लम तो तल्लक हता या मोता जी। अब ईजा आ गया, ईजा, खावंद ने बीवी से कहा अंति तालिकुन ईजा लम उतल्लिक की कि तुझे तलाक है, ईजा लम उतल्लिक की जब मैं तुझे तलाक न दूं। यह ईजा के साथ मा भी ले आता है, अंति तालिकुन ईजा मा लम उतल्लिक की, तवज्जो है। तो फिर इस सूरत में साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। याद रखो ये जो ईजा है, ईजा ये जर्फ है लेकिन यह शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ईजा जर्फ है और यह शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जर्फ का पीछे आप हुक्म पढ़ चुके हैं मता और मता मा वगैरह के अंदर, उसमें जैसे ही खामोश होता है खावन फौरन क्या हो जाती है, तलाक। अंति तालिकुन मता लम उतल्लिक की, तो खामोश होते ही फौरन तलाक। और अगर शर्त के लिए इन को लेकर आए अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की, तो आपने अभी पढ़ा जिंदगी के आखिरी लम्हे में तलाक वाकई होगी। तो ये जो ईजा है ये तो जर्फ है लेकिन ये शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर इसको जर्फ करार दें तो खावंद के खामोश होते ही फौरन तलाक होनी चाहिए। अंति तालिकुन ईजा लम उतल्लिक की, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक ना दूं। जैसे खावंद खामोश होगा ऐसा वक्त पाया गया और उसमें खावंद ने तलाक नहीं दी लिहाजा औरत को तलाक हो जाएगी। और अगर आप इस ईजा को शर्त के लिए करार देते हैं जैसे इन था, तो उस वक्त तलाक कब होती थी, जिंदगी के आखिरी लम्हे में। तो फिर इस सूरत में भी जिंदगी के आखिरी लम्हे में तलाक का हुक्म आएगा। तवज्जो है, ईजा में दोनों एहतमाल हैं, ईजा जर्फ है लेकिन यह शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको जर्फ करार दिया जाए तो इसका तकाजा है फौरन तलाक होनी चाहिए। ये जो जुमला जिक्र करेंगे अंति तालिकुन ईदा लम उतल्लिक की, और अगर इसको शर्त के लिए करार दिया जाए तो फिर यह तकाजा करता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे में तलाक होनी चाहिए। तो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं ये ईजा जो है ना हकीकत में जर्फ है, ईजा हकीकत में जर्फ है और शर्त के लिए जो इस्तेमाल होता है वो इसका मजाजी माना है, वो इसका मजाजी माना है। जब यह जर्फ है तो इसका वही हुक्म होगा जो मता और मता मा का था, लिहाजा ये लफ्ज बोलते ही फौरन तलाक हो जाएगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं कि ईजा जर्फ भी है और शर्त के लिए भी आता है और दोनों इसके हकीकी माना है। जर्फ भी हकीकी माना और शर्त भी हकीकी माना, तो दोनों इसके हकीकी माना है। लिहाजा लिहाजा इस सूरत में आखिर उम्र में तलाक होगी। तवज्जो है, आखिर उम्र में तलाक होगी। याद रखो ये जो ईजा के अंदर इख्तिलाफ है दरअसल ये इख्तिलाफ है उलमाए बसरा और उलमाए कूफा का। उलमाए बसरा फरमाते हैं वही जो साहिबैन का मजहब है कि ईजा हकीकत में जर्फ है और शर्त के लिए जो इस्तेमाल होता है ये मजाजन इस्तेमाल होता है। और जो इमाम साहब का मजहब है वो उलमाए कूफा का मजहब है। उलमाए कूफा फरमाते हैं कि जो ईजा है ये जर्फ भी है और शर्त भी है और ये दोनों इसके हकीकी माना है, दोनों में से एक भी मजाजी माना नहीं है। तो जब किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन ईदा लम उतल्लिक की, तो इमाम साहब फरमाते हैं आखिरी लम्हे में जिंदगी के तलाक होगी। और साहिबैन फरमाते हैं कि ये ईजा जर्फ है हकीकत में, तो वो कहते हैं इसका वही हुक्म होगा जो मता का था और मता के अंदर अंति तालिकुन मता लम उतल्लिक की, वहां फौरन तलाक होती थी, जैसे ही खामन खामोश होता था फौरन तलाक होती थी, तो यहां भी फौरन तलाक हो जाएगी। तो साहिबैन के नजदीक खावन के खामोश होते ही तलाक हो जाएगी और इमाम साहिब के नजदीक जिंदगी के आखिरी लम्हे में तलाक होगी जब ईजा का लफ्ज वो इस्तेमाल करे। तवज्जो है, अब देखिए तफसील भाई। वलौ काला, और अगर खावन ने कहा अंति तालिकुन ईदा लम उतल्लिक की कि तुझे तलाक है जब तुझे मैं तलाक न दूं, और ईदा मा लम उतल्लिक की, तो ईजा के साथ मां भी ले आया, तो लम तुतल्लक हत्ता यमूता इंदा अबी हनीफत रहिमहुल्लाह, तो इस औरत को तलाक नहीं होगी यहां तक कि खावंद का इंतकाल हो जाए, तो उस वक्त तलाक होगी। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं तुतल्लक हीन सकता, कि औरत को तलाक हो जाएगी जिस वक्त खावंद खामोश हुआ। लिअन्न कलिमत इदा लिल वक्त, इसलिए क्योंकि कलिमा इदा वक्त के लिए आता है, यह ज़र्फ है। قال الله تعالى, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इदा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। कव्वरा युकव्विरु का असल माना है लपेटना, असल माना क्या है लपेटना, तो यहां मुराद है बेनूर होना भाई। तो कहते हैं इदा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा, तो यहां देखो इजा जरफियत के लिए आया है। वकाल काइलुहुम, और अरबों में से कहने वाला कहता है व इदा तकूनु करीहतुन उदा लहा व इदा युहासुल हैसु युदा जुंदुबू, ये किसी कदीम शायर का शेर है अरब के भाई। और देखो यहां वो इजा लेकर आया है दोनों मिस्रों में, व इजा तकूनु करीहतुन उदा लहा, करीहतुन कहते हैं मुसीबत को और जंग को, करीहतुन नागवार चीज यानी मुसीबत या जंग। व इजा युहासुल हैसु, हैस जो है ये अरब का कोई हलवा है जो खजूर पनीर और घी से वो बनाते थे, खजूर घी और पनीर से कोई खास मीठा हलवा बनाते थे, उसको हैस कहते हैं। और युहासु उसी हैस से है, यानी हैस बनाना, उसको तैयार करना। और युदआ जुंदुबू, जुंदुब एक आदमी का नाम है, यह शायर है, वो कोई गिला शिकवा कर रहा है अपनों से, कहता वह इजा तकून करीहतुन, और जब कोई मुसीबत या जंग होती है उदआ लहा, तो मुझे उसके लिए बुलाया जाता है, उदआ मुझे बुलाया जाता है, लहा उसके लिए। वह इजा युहासुल हैसु, और जब हैस तैयार किया जाता है, मीठी चीजें तैयार की जाती हैं, तो युदा जुंदुबू, तो फिर जुंदुब को बुला लेते हैं लोग भाई, यानी मुसीबत में तो मुझे याद रखते हो और खुशी के मौके पर मुझे याद नहीं रखते। तो कहते हैं वह इजा तकूनु करीहतुन उदा लहा, और जिस वक्त कोई मुसीबत या जंग होती है तो मुझे उसके लिए बुलाया जाता है। वह इजा युहासुल हैसु, और जब हैस तैयार किया जाता है युदा जुंदुबू, तो जुंदुब को बुला लिया जाता है। अब देखो यहां पर देखो, तवज्जो से सुनो भाई, यहां दोनों मिस्रों में इजा आया, वह इजा तकूनो वह इजा युहासु, और याद रखो ये इजा जरफिया है, ये जर्फ के लिए है, वक्त के लिए है। वजह यह कि इजा जब शर्त के लिए आता है तो वो जजम देता है इन की तरह, इन तजरिब आजरिब, और इसी तरह इजा तजरिब आजरिब, तवज्जो है, तो इजा जजम देता है, और यहां इजा के बाद है तकूनो व इजा तकूनो, मालूम हुआ ये इजा जरफिया है, क्योंकि अगर ये शर्त के लिए होता तो तकूनो ये तो मरफूअ है, ये मजजूम मजजूम होता तो कैसे पढ़ते, व इजा तकूनो, ये तकूनो पर जरा जजम लाओ कैसे पढ़ेंगे, तो ये इजा जब जजम देगा तकूनो, तो आखिर में जजम आ जाएगा तकून, और फिर वह भी साकिन नून भी साकिन इज्तिमाई साकिन ऐन आया, और अव्वल मद्दा हो तो उसको गिराते हैं, तो क्या बन जाएगा तकून। तो अगर ये इजा शर्त के लिए होता तो यूं होता कलाम व इजा तकुन करीहतुन, लेकिन शेर में तो तकुनु है, मालूम हो ये इजा शायद शर्त के लिए नहीं लाया बल्कि किस लिए लाया है, जर्फ के लिए, क्योंकि ये इसका हकीकी माना है। और इसी तरह व इजा युहासुल हैसु, यहां पर भी इजा के बाद युहासु मरफू है, यह जजम नहीं दे रहा इजा, मालूम हो यह इजा जर्फ है, अगर यह जजम देता तो कैसे पढ़ते, व इजा युहास भाई सीन साकिन होता और फिर अलिफ भी इज्तिमाई साकिन से गिर जाता, तो साहिबैन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये इजा जो है ये वक्त के लिए आता है और शर्त इसका मजाजी माना है, और अरबी का एक शायर भी देखो इसको इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए जजम नहीं दे रहा, मालूम हुआ वक्त ही इसका हकीकी माना है। तो यहां इस खावन के कौल अंति तालिकुन इजा लम उतल्लिक की, यहां भी इजा किस लिए होगा, वक्त के लिए होगा, और लिहाजा खावन के खामोश होते ही फौरन तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि खावन ने क्या कहा है अंति तालिकुन इजा लम उतल्लिक की, कि तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, और जैसे ही खामोश हुआ ऐसा वक्त पाया गया जिसमें वो तलाक दे सकता था लेकिन उसने नहीं दी तो तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं फसारा बि मंजिलती मतावा मतामा, साहिबैन की बात चल रही है तो कहते हैं फसारा बि मंजिलती मतावा मतामा, तो ये जो ईजा है ये मता और मतामा के दर्जे में हो गया। वलिहादा लव काला लिमरअती ही, और इसी वजह से अगर खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन ईजा शिती, कि तुझे तलाक है ईजा शिती जिस वक्त तू चाहे। याद रखो बाज औकात खावंद बीवी को तलाक का इख्तियार दे देता है, तलाक का इख्तियार दे देता है, फिर यह इख्तियार बाज औकात सिर्फ मजलिस तक रहता है, जिस मजलिस में बातचीत चल रही है उसी मजलिस तक औरत के पास इख्तियार होता है, और बाज औकात खावंद ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लेता है कि फिर वो इख्तियार मजलिस में भी रहता है और मजलिस के बाद भी उसको वो इख्तियार होता है। मसलन अगर खावंद ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इन शेती, तुझे तलाक है अगर तू चाहे, तुझे तलाक है अगर तू चाहे, देखो यहां उसने कोई वक्त को जिक्र नहीं किया, इन लेकर आया है, तो लिहाजा यह इख्तियार मजलिस तक है। खामन ने इख्तियार दे दिया है, बीवी मजलिस के अंदर जुदाई का फैसला कर सकती है, अपने आप को तलाक दे सकती है, लेकिन जैसे ही मजलिस खत्म होगी यह इख्तियार खत्म हो जाएगा, बाद में औरत अपने आप पर तलाक वाकई नहीं कर सकती। लेकिन अगर खावन यूं कहता है अंति तालिकुन इजा शिती, तुझे तलाक है जिस वक्त तू चाहे, तो खावन ने इसको वक्त के साथ मुकय्यद कर दिया, जिस वक्त तू चाहे, लिहाजा यह सिर्फ मजलिस तक इख्तियार नहीं रहेगा, मजलिस के बाद भी जब औरत चाहे अपने आप को तलाक दे सकती है। तो साहिबैन की दलील चल रही है, साहिबैन फरमाते हैं कि जब खावन अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन इजा शिती, इजा लेकर आए, तो ए इमाम साहेब आप भी कहते हैं यहां इजा जरफियत के लिए है और इसका तर्जमा वक्त के साथ करेंगे, तुझे तलाक है जिस वक्त तू चाहे, मालूम मजलिस के बाद भी उस औरत को इख्तियार रहेगा आपके नजदीक। तो साहिबैन के नजदीक भी इस औरत को मजलिस के बाद इख्तियार है और इमाम साहेब के नजदीक भी इस औरत को मजलिस के बाद इख्तियार है। तो साहिबैन फरमाते हैं देखा यहां ईजा आया है, अगर यह शर्त के लिए बनाते आप तो फिर यह अंति तालिकुन इन शिती के माना में होता, और अंति तालिकुन इन शिती के अंदर तो इख्तियार कब तक रहता है, मजलिस तक, कब तक रहता है, मजलिस तक। लेकिन आपने यहां अंति तालिकुन ईजा शिती में आप भी फरमाते हैं कि मजलिस के बाद भी औरत को इख्तियार है, मानू आपने यहां ईजा को इन के माना में नहीं लिया। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ ईजा के अंदर असल माना वक्त ही है। भाई दलील भी समझ में आई कि नहीं? तो कहते हैं वलिहादा लव काल अली इमराती ही, और इसीलिए खावन ने अगर अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन ईदा शीती, कि तुझे तलाक है जब तू चाहे, ला यखरुजुल अम्रु मिन यदिहा बिल क़ियामी मिनल मजलिसी, तो औरत के हाथ से मामला नहीं निकलता मजलिस से उठ जाने से भी, कमा फी कौली ही मताशीती, जैसे कि खावंद के कौल मताशीती के अंदर है। खावंद अगर अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन मताशीती, तो इस सूरत में भी मजलिस के बाद भी उसको इख्तियार रहता है। तो ईजा के अंदर भी इमाम साहब आप फरमाते हैं कि मजलिस के बाद इख्तियार रहेगा, मालूम आपने ईजा को किस माना में लिया है, मता के माना में यहां पर। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु युस्तामल फी शर्त ऐज़न, कि ये जो ईजा है ये शर्त में भी इस्तेमाल होता है, यानी शर्त भी इसका हकीकी माना है। काल क़ाइलुहुम, अरबों में से कहने वाला कहता है, काल क़ाइलुहुम अरबों में से कहने वाला कहता है वस्तग़निमा अग़ना का रब्बुक बिलग़िना व इज़ा तुसिबका खसासतुन फतजम्मली, वस्तगनी और तू बेनियाज रह, तू बेनियाजी को इख्तियार कर, मा अगना का, ये मा वक्त के लिए है, मा अगना का, जब तक तुझे बेनियाज रखे रब्बू का आपका रब बिलगिना मालदारी के जरिए। शायर किसी को नसीहत कर रहा है कि जब तक तेरा रब तुझे मालदारी के जरिए बेनियाज रखे तू लोगों से बेनियाज रह, किसी की परवाह न कर, किसी की परवाह न कर। वह इदा तुसिब का खसासतुन, खसासा कहते हैं मोहताजी, तंगदस्ती और फकर को। وَإِذَا تُصِبْكَ خَسَاسَةٌ, اور جب تجھے کوئی محتاجی یا فقر پہنچے, فَتَجَمَّلِ, تو تُو زینت اختیار کر, تو زینت اختیار کر, یعنی صبر کے ساتھ رہ, کسی کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار نہ کر, ورنہ لوگ تیری عزت نہیں کریں گے بھائی. تو اپنے فقر و فاقے اور غربت کو چھپا کر رکھو. پھر دیکھیے ترجمہ, وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى, کہ تو بے نیازی کو اختیار کر جب تک مالداری کے ذریعے آپ کا رب آپ کو بے نیاز رکھے. وَإِذَا تُصِبْكَ خَسَاسَةٌ فَتَجَمَّلِ, اور جب آپ کو فقر اور محتاجی پہنچے تو پھر فَتَجَمَّلِ, تو زینت اختیار کر, یعنی صبر سے کام لے. تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایزا شرط کے لیے بھی آتا ہے. یہاں دوسرے مصرے میں دیکھو, وایزا تصب کا, یہ ایزا جزم دے رہا ہے تصب کو, اور آگے فتجم ملی, وہاں پر فا جزائیہ بھی آ رہی ہے جو شرط کے جواب میں فا آتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا ایزا شرط کے لیے بھی آتا ہے. ایزا, یہ عربی کا ایک شاعر, دیکھو ایزا کو شرط کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے تصب, تصب کا اس پر جزم آ رہا ہے, ورنہ تو اصل میں ہونا چاہیے تھا تصیب کا. امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے, کہتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تُطَلَّقْ فِي الْحَالِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ تُطَلَّقُ فَلَا تُطَلَّقُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ. امام صاحب فرماتے ہیں خاوند نے بیوی سے کیا کہا ہے, انت طالق ایزا لم اطلق کی, یا ایزاما لم اطلق کی, ایزا کہا ہے یا ایزاما. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, خامن کے لفظوں پر ذرا نظر رکھنا, انت طالق ایزا لم اطلق کی. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس ایزا کو وقت کے لیے قرار دیا جائے تو خاموش ہوتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی, اور اگر اس ایزا کو شرط کے لیے قرار دیا جائے تو موت کے وقت طلاق ہوگی. تو خامن نے جب یہ لفظ کہہ دیے تو اس کے بعد اب طلاق کے آنے میں شک آ گیا. طلاق میں کیا آ گیا؟ شک آ گیا, کیونکہ یہاں دونوں احتمال موجود ہیں. اگر آپ اس ایزا کو وقت کے لیے قرار دیتے ہیں تو فوراً طلاق ہے, اور اگر آپ اس کو شرط کے لیے قرار دیتے ہیں تو موت کے وقت طلاق ہے. تو جب خامن نے یہ کلام کہہ دیا اور اس کے بعد خاموش ہوا تھوڑی دیر, تو اب شک آ گیا, پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے یا طلاق نہیں ہوئی. ایزا کو ظرف کے لیے بنائے تو طلاق ہو چکی, ایزا کو شرط کے لیے قرار دیں تو طلاق نہیں ہوئی. تو طلاق کے آنے میں شک آ گیا, اور نکاح تو تھا یقینی. اس عورت کے ساتھ خاوند کا جو نکاح کیا تھا؟ یقینی تھا. جب وہ نکاح یقینی تھا تو شک والی طلاق سے وہ نکاح ختم نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے طلاق بھی یقینی چاہیے. دلیل سمجھ میں آئی امام صاحب کی؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایزا کے اندر شرط کا بھی احتمال ہے اور ظرف کا بھی احتمال ہے. اگر آپ اس ایزا کو ظرف بنائیں وقت کے لیے قرار دیں تو فوراً طلاق ہونی چاہیے, اور اگر آپ ایزا کو شرط کے لیے قرار دیں تو پھر موت کے وقت طلاق ہونی چاہیے. لہذا خامن نے جب یہ لفظ کہے اور پھر خاموش ہو گیا تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں طلاق ہو گئی یا موت کے وقت ہوگی. توجہ ہے؟ تو طلاق کے آنے میں شک آ گیا. جب طلاق کے آنے میں شک آ گیا تو اس مشکوک طلاق کی وجہ سے یقینی نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا. تو نکاح آخر عمر میں جا کر ہی ٹوٹے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ, اگر یہ جو خامن نے الفاظ کہے تھے اس میں جو ایزا تھا اس کے ذریعے اگر شرط کا ارادہ کیا, شرط کا ارادہ کیا گیا, لم تطلق فی الحال, تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی فی الحال, وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ, اور اگر اس ایزا کے ذریعے وقت کا ارادہ کیا گیا, تطلق, تو عورت کو طلاق ہو جائے گی, فلا تطلق بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ, لہذا اس شک اور احتمال کی وجہ سے عورت کو طلاق نہیں ہوگی. بخلاف مسئلت المشیت, بخلاف مسئلہ مشیت کے. مشیت کا مسئلہ کیا تھا؟ صاحبین فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن ایزا شئتی, تو آپ کے نزدیک بھی اختیار صرف مجلس تک نہیں رہے گا, مجلس کے بعد بھی رہے گا. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح مسئلہ ہے, انتی طالقن ایزا شئتی, اگر اس ایزا کو شرط کے لیے قرار دیا جائے, توجہ ہے, شرط کے لیے قرار دیا جائے تو اختیار صرف مجلس میں رہے گا, मजलिस के बाद नहीं रहेगा। और अगर इस इजा को अगर वक्त के लिए करार दिया जाए तो इख्तियार मजलिस के बाद भी रहेगा। तवज्जो है। तो जब खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इजा शीती, तो इख्तियार का मिलना तो यकीनी हो गया, औरत को इख्तियार मिल गया, औरत को इख्तियार मिल गया। लेकिन जब मजलिस खत्म हुई अब उस इख्तियार के बातिल होने में शक आ गया कि पता नहीं इख्तियार बातिल हुआ है या अभी भी बातिल, तो शक, तो इख्तियार का आना तो यकीनी था, तो शक की वजह से वो यकीनी चीज खत्म नहीं होगी बल्कि मजलिस के बाद भी औरत को इख्तियार रहेगा। दलील भी समझ में आई कि नहीं? खावंद ने कहा अंति तालिकुन इजा शीती, तो इख्तियार मिलना तो यकीनी है, इख्तियार तो मिला है, और फिर जब मजलिस खत्म हुई तो अब शक आ गया कि पता नहीं इख्तियार खत्म हुआ है या इख्तियार उसके बाद भी बाकी है, तो शक की वजह से इख्तियार को खत्म नहीं करार दिया जा सकता, मजलिस के बाद भी इख्तियार बाकी रहेगा। जैसे वहां शक की वजह से तलाक वाकई नहीं हो सकती थी, यहां शक की वजह से इख्तियार खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं बेखिलाफ मसअलतिल मशीअति, बखिलाफ मशीयत वाला मसला, भाई वो जो ऊपर आया था ना इजा शीअति, शाह शाह का क्या माना, चाहना, मशीयत इसको कहते हैं। तो कहते हैं बिखिलाफ मसअलतिल मशीअति, बखिलाफ मशीयत के मसले के, लि अन्नहु अला एतबारी अन्नहु लिल वक्ति, इसलिए क्योंकि वहां जो है वो ईजा इस एतबार से कि वो वक्त के लिए है, ला यखरुजुल अम्रु मिन यदिहा, मामला उस औरत के हाथ से नहीं निकलेगा। बई एतबार के ईजा किस लिए हो, वक्त के लिए हो। वह अला एतबारी अन्नहु लिश्शर्त या खुरुजू, और इस एतबार से कि यह ईजा शर्त के लिए है, मामला उस औरत के हाथ से निकल जाएगा। वल अम्रु सारा फी यदिहा, और मामला तो औरत के हाथ में आ चुका है, यानी इख्तियार मिलना तो यकीनी है। फला यखरुजु बिशक की वल इहतमाली, तो वहां भी शक और एहतमाल की वजह से मामला उसके हाथ से नहीं निकलेगा बल्कि मजलिस के बाद भी रहेगा। वहाज अल खिलाफ फीमा इदा लम तकुन लहू नीयतुन, साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि ये जो इमाम साहिब में और साहिबैन में इख्तिलाफ है कि जब इजा खावंद ने इस्तेमाल किया है, खावंद ने क्या कहा है, अंति तालिकुन इजा लम उतल्लिक की, कहते हैं ये साहिबैन और इमाम साहिब में जो इख्तिलाफ है ये उस वक्त है जब खावंद ने कोई नीयत ना की हो, और अगर खावंद ने नीयत की है तो अगर उसने वक्त की नीयत की है तो फिर वो वक्त के एतबार से उसी वक्त तलाक हो जाएगी, और अगर उसने शर्त की नीयत की है तो फिर मौत के वक्त ही तलाक होगी। भाई तो कहते हैं वहाद अल खिलाफ फीमा इदा लम तकुन लहू नीयतुन, और ये जो इख्तिलाफ है इमाम साहब और साहिबैन में, फीमा ये उस सूरत में है, इदा लम तकुन लहू नीयतुन, जब खावन की कोई नीयत ना हो, अम्मा इदा नवल वक्त, बाकी खावन ने अगर वक्त की नीयत कर ली, यकऊ फिल हाली, तो उसी वक्त तलाक वाके हो जाएगी, यानी जैसे ही खामोश होगा। वलो नवा शर्त, और अगर खावन ने शर्त की नीयत की, या काउफी आखिरिल उमरी, तो उसके आखिरी उम्र में यह तलाक वाके होगी, लिअन्न लफ्ज यहतमिलुहुमा, इसलिए क्योंकि ये इजा का लफ्ज दोनों का इहतमाल रखता है, वक्त का भी और शर्त का भी। भाई चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।